साक्षात्कार के आधार से नहीं बना, ये बुद्धियों के द्वारा तैयार किया गया। इसके ऊपर लिखा भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी। तो किस तरह भारत का उत्थान होता है और किस तरह वो भारत का पतन होता है, तो उसी की कहानी है। भारत कोई 60-70 करोड़ आबादी के लिए नहीं बोला, भारत कोई चैतन्य आत्माओं के लिए बोला गया जो राम सीता का पार बजाने वाली आत्मा है। तो इसमें दिखाया गया है किस तरह वो उत्थान होता है और किस तरह उनका पतन होता है। इसलिए बाबा भी मुरली में बोलते हैं कि सीढ़ी का चित्र जो है वो भारतवासियों के लिए, और जो झाड़ का चित्र है वो जो है वो विदेशियों के लिए। मतलब विदेशी आत्माएं झाड़ का चित्र सुनकर के आकर्षित होती है, और भारतवासी आत्माएं जो है वो सीढ़ी का चित्र सुनते ही वो आकर्षित हो जाए, क्योंकि इसमें 84 जन्म लेने वालों की कहानी, कम जन्म वालों की कहानी नहीं है, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, जो एक दिन भी कम नहीं, क्या उनकी कहानी है। तो सीढ़ी के चित्र में कलयुग के साथ ही दिखाया गया संगम युग। संगम युग के लिए बाबा ने क्या बोला, संगम युग 40 वर्ष, संगम युग 50 वर्ष, संगम युग 100 वर्ष। 100 वर्ष 60 वर्ष तो राजधानी की स्थापना के आधार से होगा, तो 40 वर्ष का जो संगम युग नीचे लिखा भी हुआ 40 वर्ष का संगम युग। इस 40 वर्ष का जो संगम युग है वो सती की शूटिंग के आधार से बताया गया है। बाबा ने मुरली बोला है सूक्ष्म मतन 40 वर्ष के लिए रहते हैं, तो जो सूक्ष्म 40 वर्ष के लिए रहते हैं, माना कोई ऐसी विशेष आत्मा है जिसके लिए 40 वर्ष जिसके लिए सूक्ष्म मतन रखा जाता है, जो आज में थी, जो आज वाली आत्माएं थी उनके लिए बताया गया कि उनके लिए सूक्ष्म मतन 40 वर्ष के लिए रखते हैं। माना आज में जो बीज होता है वो इसमें प्रत्यक्ष होने लग जाता है। तो बाबा ने मुरली बोला नीचे लिखना चाहिए विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, और ऊपर लिखना चाहिए विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। माना जिनकी परमात्मा से विपरीत बुद्धि हो गई वो तो विनश्यन्ति की लिस्ट में चले गए, और जिनकी प्रीत बुद्धि हुई जो यज्ञ के आदि के बच्चे थे जो सर्वसिस्ट से एडवांस नॉलेज लेने लग जाते हैं उनकी हो जाती है प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तो ये नीचे जो दिखाया गया है संगम, ये 40 वर्ष का संगम दिखाया गया, माना ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्मा भी बिना शांति की लिस्ट में आ गई। उनका क्या हुआ, कहीं छूट गया ना, अकाल मृत्यु हो गई, काल पर जीत तो नहीं पहनाई पहनी उन्होंने। इस तरह जो बोला बाबा ने बिना शांति की लिस्ट में आ गए। यदि के आदि में बाबा ने बोला है विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने, माना उन माँ पिता के झगड़े में बच्चे भी क्या हो गए, उन्होंने भी घीचे डाल करके उस विनाश ज्वाला को प्रज्वलित और कर दिया। तो इस तरह जो वो झगड़ा मचा, तो बिना शांति की लिस्ट में तो होना ही था, क्योंकि माँ जो होती है वो जब तक बच्चे नहीं होते हैं तब तक उसका मोह किसमें होता है, पति में होता है। जब बच्चों को जन्म दे रहे तो बुद्धि किसमें चली जाती है, बच्चों में चली जाती है। इसलिए मोस्टली घर परिवार में जो झगड़े होते हैं उनकी जो मूल जड़ बनती है वो कौन बनते हैं, बच्चे ही बनते हैं। ऐसे ही है जिनके आदमी बच्चे जो आखिरी थे उन्होंने क्या किया, माँ पिता के बीच में झगड़ा पैदा कर दिया। जब झगड़ा पैदा कर दिया तो विनाश ज्वाला प्रज्वलित होनी ही थी। इस तरह जो वो बिना शांति की लिस्ट में आ गया, मतलब शरीर छूट गया, इसी शरीर से जीते जी वो स्वर्ग में नहीं जाती ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्मा। शरीर छोड़ करके उनको स्वर्ग में जाना होता है। भाव होता है पूरे 84 जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। तो 84 जन्मों का अंत तो हो गया 36 और अंत के भी अंत में मतलब तो द्विजन्म दूसरा जन्म मतलब 76 का जो पीरियड है वो 84 जन्मों के अंत के भी अंत का पीरियड हो गया। वो आत्मा जो है यज्ञ के आदि की मातृता वो इसी शरीर से स्वर्ग में जाते हैं। अब ब्रह्मा गंगा जी जैसी आत्माओं ने क्या किया, 69 में बाबा ने शरीर छोड़ा और 65 में मम्मा ने शरीर छोड़ दिया। तो 65-69 से लेकर के जब तक कृष्ण का जन्म नहीं होता मना 2017 तक का जो बीच का पीरियड है वो तो फिर उन्होंने नहीं देखा ना। तो बाबा बोलते एक दिन भी कम नहीं। तो ब्रह्मा बाबा के उस हिसाब से क्या हुआ, 50 वर्ष कम हो जाते हैं। माना वो इसी शरीर से इन्हीं आंखों से स्वर्ग नहीं देखते, दूसरा जन्म लेकर के वो स्वर्ग में जाते हैं। इस तरह ये संगमयुग का पीरियड दिखाया गया। विनय शांति विनाश को प्राप्त हो गए, उनके पद का क्या हो गया, पद जो है वो कम हो गया ना। इतना दिखाया ऊपर का जो पीरियड दिखाया गया वो 40 वर्ष के बाद का पीरियड दिखाया गया। नीचे जो दिखाया था 36 से लेकर के 76 तक का जो पीरियड है वो 40 वर्ष का, और 76 के बाद का जो पीरियड है वाला 76 से लेकर के आगे का जो पीरियड है कृष्ण जन्म तक का ये ऊपर दिखाया गया। ऊपर वहां ने बोला लिखना की विनाशकारी प्रीत बुद्धि विजयंती, माना ये विजयंती कृष्ण में आ जाते हैं। इसी शरीर से क्या होते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, विकारों पर विजय प्राप्त की उन्होंने। तो ये संगम युगी स्वर्ग दिखाया गया। संगम युगी स्वर्ग में इसमें आप देखिए दो दरवाजे दिखाए गए। तो यहाँ दो दरवाजे दिखाए गए, दो दरवाजे में क्या दिखाया गया, एक तरफ से कुमार निकल रहे हैं काले दरवाजे से और गोरे दरवाजे से कुमारियां निकल रही हैं। ये काले दरवाजे से जो दिखाए गए ये है रुद्रमाला की मर्जी, घर गृह के कीचड़ में रहकर परमपिता का पुरुषार्थ करने वाले। और वो जो दिखाए गए रानियां वो दिखाया गया अंदर का परगोटा माना गोरा दरवाजा सरेंडर वर्ग। तो वो उनमें जो है घर गृह के कीचड़ में आश्रमों के शुद्ध वातावरण में रहने वाली आत्माएं हैं, तो उनमें प्योरिटी की पावर आती है। तो ये जो है ये रुद्रमाला के लेकिन ये ज्ञानी तो आत्माएं हैं, ज्ञान जो है इनके अंदर भरा हुआ होता है। तो बाबा मुझे बोलते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो पहले पहले रुद्रमाला तैयार होती, उसके बाद विजय माला तैयार होती, माना पहले राजाओं की माला। रुद्रमाला के मर के क्या जन जन्मांतर के राजा बनने वाले हैं। राजाएं कभी किसी के आदमी नहीं रहते थे, तो इनके अंदर अधिपाय रहने के संस्कार है। और रानियां तो जन जन्मांतर क्या रही, अधीन रही, तो उनमें हाँ के संस्कार माना वो अंदर रहने वाली है। तो रुद्रमाला जो है वो दिखाई जाती है मुंडो रुंद और मुंडमाला दिखाई जाती है, रुंदमाला और मुंडमाला। मुंडमाला का मतलब मुंडों की माला, उनके रुद्रमाला के मणकों का मुख का गायन है। माना मुख से उन्होंने क्या सुना है, ज्ञान के वस्त्र का उनका क्या होता है, जनता होता है। क्योंकि राजाएं क्या करते थे, पाप करते थे, ढेरों रानियां करते थे, माना व्यभिचारी होते थे। और रानिया में गुण क्या होते थे, रानिया में अव्यभिचारी पाना होता था। कोई कोई ऐसी होती थी क्या, लेकिन मोस्टली क्या होता था, नहीं अपनाती थी। जो मैला कपड़ा ज्यादा होता है तो पहले पहले परमात्मा आकर के उन कपड़ों को धोता है जो गुरु नानक साहब ने बोला कि मूत पलीति कपड़ धोए, तो मूत पलीति कपड़ धोना माना गंदे शरीर रूपी वस्त्र भगवान ने आकर के पहले पहले धोए, क्योंकि जो ज्यादा गंदा कपड़ा होगा उसको ज्ञान जल्दी ज्यादा जरूरत है, और जो गंदा ही कपड़ा नहीं है वस्त्र गंदा ही नहीं है उनको ज्ञान की जरूरत नहीं है। माना विजयमाला वाली आत्माओं को ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं है, वो लास्ट में निकलेंगे और क्या लगे वो झटक कैच कर लेंगे, कैच कर लेंगे, इनको पहले तैयार करना पड़ता है। इस तरह जो ये रुद्रमाला जब तैयार हो जाती है फिर रुद्रमाला के मन के विजयमाला में नंबर वार दिखाए गए हैं, क्या नंबर वार दिखाए गए, राम, राम के बाद भरत, भरत के बाद लक्ष्मण और लक्ष्मण के बाद ये शत्रुघ्न दिखाया गया। इस तरह ये जो चारों भाई हैं ये ब्रह्मा के चार पुत्र सनत सनातन सनातन और सनत सनातन सनंदन और सनत कुमार, या इनको कृष्ण के सखा बोल रहा हूँ, उनके साथ दिखाते ना कृष्ण को दिखाते हैं, मंत्र का दिखाते हैं, मतलब और भी सखा दिखाते हैं। तो ये जो दिखाया गया ये है हमारा इसमें जन्म की शुरुआत पहले मन बुद्धि से होती है, एकदम सब पहले पहले सरस्वती कहाँ से होगी, मन बुद्धि से पंचम भरपूर हो जाएगी। तो मन बुद्धि का जब उद्धार हो जाएगा, मन बुद्धि की सदगति हो जाएगी, मतलब गति ऊंची हो जाएगी, तो फिर शरीर भी, शरीर भी क्या हो जाएगा, वो भी पंचम काया उसकी हो जाएगी। माला के मर के दिखाए गए और इधर विजय माला के मर के दिखाए गए हैं, ये जो है ये जब तो बाबा मुरली बोलते हैं कृष्ण की जरा सिंधी पड़े, कृष्ण ने माखन चुराया हा? और मैं जराई, ये जो गायन जो बना है कृष्ण का, ये कौन से कृष्ण को क्या बना, उस समय कृष्ण को दिखाया गया राधा कृष्ण को, और यहाँ जो दिखाया है जो आप समय दिखाया गया और वो राधा कृष्ण अलग है, जो संगम भी है संगम भी कृष्ण का गायन पूजन है, क्योंकि बाबा भी मुरली बोलता है गायन पूजन सब कहाँ के होते हैं, संगम के महिमा, बाबा मुरली बोलते हैं महिमा भी वह होनी चाहिए जो आपके संपूर्ण स्वरूप की है। इस संपूर्ण स्वरूप का बनता है, फिर वहां बोलते हैं अभी से ही सभी कायदे कानून परमात्मा आकर के स्थापन करता है, तो कौन से कायदे कानून स्थापन करता है, परमात्मा आता है ना वो कायदे कानून स्थापन कर देता है, वो फिर ध्यान पार्टी की आत्माएं चाहे वो रुद्रमाला के मन से हो जाए विजयमाला के आत्माएं गई है, ये इंस्पिरेटिंग पार्टी पार्टी, उसके बाद सिंगल पार्टी। तो प्लानिंग रुद्रमाला के मन की ये है प्लानिंग पार्टी, पूरा चार चित्रों में सारी नॉलेज बता देंगे, ये स्थापना कैसे होगी, कब होगा, राधा कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कब होगा, जैसे तो प्लानिंग तो ये बना लेते हैं दिखाएगा, माना उनकी वृद्धि रुकी जाती है, और तुम तो कमो प्रधान हो, तुम बैठ कर क्या सर्विस करोगे, क्या कमो करोगी, तो उनके अंदर जैसे मम्मा बाबा विश्व किशोर वगैरह जो भी आत्माएं हैं एडवांस पार्टी में गई है, वो आत्मा उनमें प्रवेश करके उनको उमंग उत्साह देती है, जैसे आपकी सर्विस हुई तो किसी को ये आ जाए कि मैंने सर्विस की, अरे कोई ना कोई तो निमित्त बनता ही है, मम्मा बाबा प्रवेश करके उन बच्चों को जिनको उठाना है उनको उठा लेते हैं, तो ये हो गया इंस्पिरेटिंग पार्टी उमंग उत्साह देने वाले, और तीसरी है प्रैक्टिकल पार्टी। तो प्रैक्टिकल पार्टी के लिए बाबा ने मुरली बोला कि बिना प्रैक्टिकल के कार्य होने वाला नहीं, वो है विजयमाला, जैसे बिल्डिंग तैयार करने के लिए इंजीनियर, इंजीनियर जो है प्लानिंग तो बना लेगा, इंजीनियर जो है वो प्लानिंग बना लेगा कि बिल्डिंग इस तरह तैयार होनी है, लेकिन उसे कहा जाए बनाओ तो नहीं बना पाएगा। तो बनाने के लिए किसको आना पड़े? मजदूर पार्टी को आना पड़े। तो वो मजदूर पार्टी कौन सी हो गई? विजयमाला। जब तक वो नहीं आती तब तक स्वभाव संस्कार मिलकर के एक नहीं होते, क्योंकि रुद्रमाला से मर गए तो जन्म जन्मांतर के राजा बने। राजाएं क्या होते थे? आपस में टकराते रहते थे, घिटपिट होती रहती थी। क्यों? क्योंकि इम्प्यूरिटी थी। तो टकराते 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 ये भी क्या बन जाते हैं? जैसे पहाड़ों से पत्थर जब गिरते हैं वो झरनों में आते गिरते गिरते नीचे टकराते टकराते गोल कितने क्या बन जाते हैं? शालिग्राम बन जाते। तो इस तरह जो है ये संस्कार शक्ति जब आती है तो स्वभाव संस्कार मिल करके क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। तो यहाँ पर बाबा ने एक महावाक्य मुझे बोला है, ये राधा कृष्ण संगम की राधा कृष्ण दिखाए गए ना, तो कृष्ण जो है वो सूर्यवंशी, राधा चंद्रवंशी। सूर्यवंशी कृष्ण, चंद्रवंशी राधा की आप जाना सके। तो बड़ी मूंज हो गई है क्या? कृष्ण सूर्यवंशी, राधा चंद्रवंशी। अब बताओ सत्य में क्या दो वंश होंगे क्या? सत्य में तो एक ही वंश होगा, सूर्यवंशी। ये वंश जो अलग लोग जो बताए तो ये बात कहां की? संगमी की कृष्ण की ही बात है कि सूर्यवंशी कृष्ण वो तो सूर्यवंशी है और राधा चंद्रवंशी है। तो सूर्यवंशी कृष्ण चंद्रवंशी राधा के यहाँ जा नहीं सकता। माना हमारी भारतीय परंपरा में क्या होता है कि लड़के वाले लड़की वाले के यहाँ कभी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनका ऊंच कुल है और लड़की वाले क्या है? नीच कुल के हैं। लड़के के मुकाबले तो वो नीचे ही है ना। तो शूटिंग किसने की? संगम ऊपर। इसलिए राम मुरली मेहता जितने भी यादगार जो भी यादगार हैं, दिन त्योहार हैं या जयंतिया है, सब संगम की यादगार है क्या? वो सब संगम की यादगार हैं। हम बच्चों नहीं वो यादगार स्थापन की, तो वही भक्ति मार्ग में चली आ रही है। तो इस तरह पाने वाला बड़ी मूंज हो गई है। क्या मूंज हो गई है? कि वो दोनों जो है वो एक कैसे है? एक होने के लिए क्या करना पड़े? चंद्रवंशी राधा तो सूर्यवंशियों के पास आना ही पड़े। इसलिए शास्त्रों में दिखाते भी हैं, राधा जो थी वो कृष्ण के महलों में आती थी, खेलती थी, फिर चली जाती थी। तो खेलना माना ज्ञान रत्नों से। वो जो राधा का पाठ बजाने वाली आत्मा, संगम की राधा का पाठ बजाने वाली आत्मा जो चंद्रवंशी है, माना चंद्रमा के कुल में जो पल रही है, वो जब आती है तो क्या करेगी? एकदम आकर के सरेंडर नहीं हो जाएगी। वो पहले क्या करेगी? ज्ञान रत्नों से खेलेगी। फिर उसके बाद कहते हैं कृष्ण से स्नेह हो गया, प्रीति हो गई और वो है? हाँ आ गए। तो इस तरह ये संगमी की राधा कृष्ण की बात है। कृष्ण के लिए दिखाते हैं कि कृष्ण ने जो है वो कृष्ण के पीछे कंसी जराकुंडी पड़े। अब बताओ सती में कोई कंसी जराकुंडी होते हैं? बेसिक नॉलेज में क्या बताया जाता है? बेसिक नॉलेज में ये बताया जाता है कि सती में जो है वो कश्यप कंसी जराकुंडी ये सब असुर नहीं होते हैं, ये सब कहाँ पर होते हैं? तो फिर ये कृष्ण कौन से कृष्ण की यादगार है? भाव बोलता है जो कुछ भी है संगम की यादगार है। मुरली बाबा बोलता है ना, दिन त्योहार रीति रस्म रिवाज सब संगम से शुरू होते हैं, यादगारें सब संगम की है। जो हम प्रैक्टिकल करते हैं उसका भक्ति मार्ग में गायब होता है। तो फिर कैसे हो गया? जरूर वो प्रैक्टिकल में एक्टिव हुई तब तो कंसी जरा कुंडी जो पीछे पड़ते हैं, कहते हैं कृष्ण जो था वो कौन से नंबर का था? आठवें नंबर का। आठवें नंबर का जो कृष्ण है जो देवकी से जन्म लिया
लेकिन जन्म दिया ना, तो जो पहले जो साथ थे उनको तो कृष्ण ने क्या कर लिया, कोस लिया, माना उसको मार डाला अपने अंदर कर लिया। लेकिन आठवें नंबर का जो कृष्ण होता है वो कृष्ण की कंस की जेल में से क्या निकल आता है, बाहर निकल आता है, वो किसी के अंदर में नहीं रहता। कहते जब कृष्ण जन्मता है तो बिजली से चमक जाती है, जैसे बहुत घोर अंधेरी काली रात हो उसमें अचानक बिजली चमक जाए तो आंखें कैसी हो जाएंगी, आंखें चकाचौंध हो जाएंगी, ये क्या हो गया अचानक। वैसे भी भक्ति मार्ग में भी अचानक बिजली चमकते तो बहुत भयभीत हो जाते हैं, क्या ऐसा ना किसी के ऊपर गिर जाए। तो जो आठवें नंबर का जो कृष्ण है वो कहते हैं वो कंस की जेल में से भाग निकलता है, माना वो उनके अंडर में नहीं आता। कहते हैं जब कृष्ण का जन्म होता है तो बिजली से चमकती है, तो जो अंधेरे अज्ञानता के अंधेरे में जो पड़े हुए होते हैं उन अंधों की भी आंखें क्या होने लग जाती है, चकाचौंध हो जाती है, ये क्या हुआ। कि पहले तो हम समझते थे कि जो घर गृहस्थी है वो ही जा रहे हैं, लेकिन ये क्या हुआ, माना जब कन्याएं जब वहां पर पहुंचने लग जाती है एडवांस पार्टी में सरेंडर होने लग जाती है तब उनकी आंखें क्या होने लग जाती है, चकाचौंध हो जाती है। तो कहते हैं कृष्ण का जन्म होता है, कब जन्म होता है, बाबा ने मुरली में क्या बोला, ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष। तो ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कब से कब तक, 48 में परमात्मा शिव ने ब्रह्मा में प्रवेश किया, और 48 में जब प्रवेश किया उस समय उनकी एज कितनी थी, 60 ईयर थी। तो 60 ईयर में प्लस 40 ईयर एड करने तो कितना आ जाएगा, 100 ईयर, माना 88 में वो ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष पूरी हो जाती है। माना मुरली में भी बाबा बोलते हैं बाप साकार से आकारी बना, आकारी से निराकारी, निराकारी से फिर साकारी बनेगा। कहने का भाव बाप साकार ये नहीं बोला माँ साकार है, बाप के लिए बोला बाप साकार, माना 36 में क्या हुआ वो साकारी बना और फिर आकारी बना, 68-69 में क्या हो गया आकारी, माना मनन चिंतन मंथन की स्टेज आकारी से फिर निराकारी बनेगा, आकारी से साकारी, साकारी मेरा कृष्ण बच्चे के रूप में। इसलिए बाबा ने मुरली बोला बाप जो है बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। 76 में मनाई गई शिव जयंती, लेकिन शिव जयंती जो मनाई गई वो विदेशियों के द्वारा मनाई जाती है, विदेशी लोग जो है वो प्रत्यक्ष करते हैं। ये जो दिखाए गए हैं चार, ये जो है इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन और देवता धर्म, मजा चार बीज दिखाए गए, चार धर्मों के बीज। तो उसमें जो इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन ये जो तीन है ये है विदेशी, इनके द्वारा परमात्मा प्रत्यक्ष तो होता है लेकिन पूरी प्रत्यक्षता नहीं होती। पूरी प्रत्यक्षता कब हो, जब बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष हो। तो बच्चे के द्वारा प्रत्यक्षता होनी शुरू कब से होती है, जब कृष्ण बच्चा जन्मे। तो कृष्ण बच्चा कब जन्मता है, तो स्कूल जन्म की तो बात नहीं है, स्कूल जन्म तो होगा 2017 में, लेकिन प्रत्यक्षता रूपी जन्म वो जो है 88 में जन्म हो जाता है, क्योंकि एक वर्ष बाबा नहीं आए, एक वर्ष बाबा नहीं आए। मुझे पूछो क्यों नहीं आए बाबा, तो कहेंगे गुलजार दादी की तबीयत खराब हो गई। अरे बाबा को अपना कार्य करना हो किसी न किसी तंग में प्रवेश करके कर ही लेंगे। तो इस तरह जो है वो बच्चे के द्वारा जो है बाप प्रत्यक्ष कर, हमारा 88 से जो प्रत्यक्षता शुरू हो जाती है। अब कृष्ण की प्रदर्शना किससे शुरू होती है, भागवत से। भागवत में क्या दिखाया गया? भागवत में सब भगाने की कथा दिखाई गई। रुक्मणी को भगाया, सप्तभामा को भगाया, गोपियों को भगाया, उसको भगाया, इसको भगाया, बस भगाना ही भगाना। तो नाम पड़ गया भागवत। तो जब भागवत बनती है वो किससे बनती है? भागने से। तो कोई स्थूल से भगाया क्या? स्थूल भगाने की तो बात नहीं है, तो भागी कैसे? भागी तो कैसे भागी? बुद्धि योग से खींचा उनको। कृष्ण, कृष्ण का मतलब ये आकर्षित करने वाला। तो उसने कैसे आकर्षित किया? ज्ञान के आधार से आकर्षित किया। जैसे कहते ना बाबा मुरली तेरी में जादू, तो कोई कार की मुरली आता, कोई दुनिया में कोई आकर्षित हो, उन्होंने दिखा दिया कृष्ण के हाथ में मुरली। गोपियां जो मुरली की तान सुन करके दीवानी हो गई। आजकल तो बहुत फर्स्ट क्लास तारे चली है, तो सुन करने कोई किसी के ऊपर आकर्षित हो जाता है क्या? तो उस कांड की मुरलिया की बात नहीं, वो ज्ञान की ऐसी मुरलिया सुनाई जो गोप गोपियों का पाठ बजाने वाली आत्माएं थी, वो क्या हो गई? आकर्षित हो गई। किसके ऊपर? हाँ, वो ज्ञान के ऊपर आकर्षित हुई, ज्ञान के आधार से आकर्षित हुई। तो वो दिखाया गया कृष्ण को, तो कहाँ की यादगार है? संगम की। फिर दिखाता है कृष्ण ने माखन चुराया। अब बताओ सती में माखन चुराया गया क्या? कृष्ण को क्या लगा दिया? इल्जाम लगा दिए, चोर बना दिया। तो उसके तो घर में ही इतना माखन था। जब घर में ही उसके इतना माखन पड़ा था तो उसे क्या चोरी करने की क्या जरूरत थी? ऐसी बात नहीं। कृष्ण जो मक्खन खाता है ना, वो गोपियों का ही खाता है, ऐरा जरा नथु वैरों का नहीं खाता वो। क्या
अपने घर का भी नहीं खाता?
अपने घर का तो खाता ही खाता, वो अपने घर का तो उसको अधिकार है, घर की जिनसे वो करते हैं उसको पूरा अधिकार है। लेकिन गोप गोपियों का जो मक्खन चुराया, तो वो जो है वो गोपियों का ही चुराया ना, गोप गोपियों का ही तो चुराया, और किसी का तो नहीं चुराया। तो भाग्यशाली हुई या दुर्भाग्यशाली हुई? भाग्यशाली। क्या मक्खन जो है जिन गोपियों का मक्खन कृष्ण का नहीं है चुरा ले, तो क्या हुई? तो बहुत भाग्यशाली हो गई। तो आपके सेंटर की टीचर क्या हो गई? गोपी हो गई। क्या क्या करती है? ब्रह्मा कुमारी इतनी मेहनत करती है, मेले लगाती है, हजारों लाखों रुपए पैसा खर्च करती है और जाकर के प्रदर्शनी लगाती है। उस प्रदर्शनी में से कोई इक्का दुक्का ज्ञान में निकलता है, फिर उनको बैठ करके खूब ज्ञान का दूध पिलाती है, फिर बच्चे जो है वो खूब बढ़िया फर्स्ट क्लास बन जाते हैं। क्या जम जाते हैं? क्या कई की तरह जो जम जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, फिर बिलोते हैं बैठ करके। क्या जब बिलोते हैं तो क्या निकल आता है? मक्खन। तब तक कृष्ण का नहीं है, क्या हो जाता है? पहुंच जाता है और मक्खन जो है सारा चुरा लेता है। तो उनको पता ही नहीं चलता हमारा मक्खन चोरी हो रहा है कि नहीं, अभी मालूम है कि नहीं है? तो मक्खन जिसका ज्यादा खाता है कृष्ण का नहीं है। हमारा जिस सेंटर में से ज्यादा वाइस क्वालिटी रूपी मक्खन, मक्खन का मतलब एक आत्मा ऐसी निकले उसके पीछे और पीछे आ रहा है, तो वो आत्मा क्या हो गई? वाइस क्वालिटी हो गई। तो वाइस क्वालिटी आत्माओं को क्या पकड़ता है? कृष्ण पकड़ता है, छाछ छाछ छोड़ देता है। क्या उनको बैठ करके तुम फिर बुलो, शायद मक्खन निकल आए। तो वो उसका काम क्या है? वाइस क्वालिटी बनाना। तो उसके जो बच्चे होंगे वो भी क्या बनाएंगे? वाइस बनाएंगे, वो बनाएंगे प्रजा। और हम बच्चे क्या बनाएंगे? वाइस क्वालिटी। इसलिए कहते हैं कोसों में कोऊ, कोऊ में भी कोई मुझे जानते हैं, कोटा माना करोड़ों पुरुषार्थियों में माना दुनिया में, उस दुनिया की हिसाब से बताया, उस दुनिया में से कोई जाकर के बेसिक नॉलेज लेते हैं, उन कोई में से भी कोई एडवांस ज्ञान लेते हैं, तो कोटा में कोई और कोई में भी कोई मुझे पहचानते हैं। सब नहीं हो तो स्वरूप को पहचान लेते, सब पहचान जाए तो सभी माला के मर के बन जाए। खास जो माला के मर के कितने बनते हैं, 108, वो है माला के दाने, जिसको सारा संसार जो है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म की आत्माएं उनको ग्रहण करती हैं। तो कोई ना कोई ऐसा कार्य तो उन्होंने किया होगा, क्या कोई ना कोई ऐसा कार्य किया जो सारा संसार उनको क्या करता है, ग्रहण करता है। तो उन्होंने क्या किया, तन धन धान स्वर्ग परिवार की बाजी लगाई। दुनिया में कोई प्रश्न आगे चल करके मान लीजिए कोई प्रश्न पूछे, आगे चल करके पूछेंगे कि भाई इनको तुमने आगे क्यों रख दिया। बात तो मुरली बोलते हैं, अभी अगर किसी का पार्ट डिक्लेयर कर देते क्या हो जाएगा, लड़ मरेंगे आपस में। तो क्यों आगे रखा, तो उसका आगे चल करके प्रूफ बताया जाएगा कि देखो इस आत्मा ने कितनी सेवा की, उस हिसाब से इसका नंबर डिक्लेयर हो गया। वैसे तो बाबा मुरली बोलते हैं, तो ये जो भी कृष्ण की भागवत में जो बताए गए चरित्र, वो सब चरित्र जो है वो संगम पर ही बजे हैं, उसी की यादगार दिखाई गई है। तो ये है संगम ही की कृष्ण, क्या श्याम सुंदर जिसको बोलते हैं, उसी शहर से श्याम और उसी शहर से सुंदर पाठ बजाता है। तो ये 21वां जन्म दिखाया गया, क्या कचु के 8 जन्म, त्रेता के 12 जन्म, 12 और 8 कितने हो गए, 20। उन्हें पूछा हमारे 21वां जन्म कौन सा है, तो 84वां जन्म कौन सा है, वो 21वां जन्म कब कहेंगे। 21वां जन्म की निशानी बा ने बताई कि हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। अभी क्या होता है, हेल्थ है तो वेल्थ नहीं, अवेल्थ है तो हैप्पीनेस नहीं। तो मतलब हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों चीजें हो तो उसे कहता हमारा 21वां। जैसे बाबा बोलते हैं, अति इंद्रिय सुख भोग गोपियों से पूछो, माना इंद्रियों से उपरांत जो सुख है वो किनसे पूछो, गोप गोपियों से पूछो। तो इस तरह जो है वो 21वां जन्म दिखाया गया, संगम युगी स्वर्ग, नरक के अंदर ही एक ऐसा स्वर्ग का मॉडल बन जाएगा। स्वर्ग का मॉडल किसमें बनेगा, नरक के अंदर ही, माना अभी तो गुप्त है, आगे चलकर वो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। जैसे पूरी होती है ना, पूरी को पहले तेल में डाला जाता है, जब वो पक जाती है तब फिर ऊपर आ जाती है, तो सारा संसार उनको देखता है। तो अभी तो गुप्त है, अभी तो बाप भी गुप्त, बाप के बच्चे भी गुप्त, उनका पद मान मर्तबा जो कुछ भी है सब क्या है, गुप्त है। दुनिया के रूप से ब्राह्मण परिवार की दुनिया के हिसाब से क्या है, साधारण है, और बाप की नजर में वो कौन है, वो पूज बनने वाले हैं, राजा बनने वाले हैं। हाँ वो VIP है,
VIP है, वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन, मतलब वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, ऑर्डिनरी।
अच्छा आगे ये दिखाया गया जो राम के जो भाई दिखाए गए, इसमें दिखाया गया ये 76 में सहयोगी बनते हैं राम के साथ, जो दिखाया गया ना नंबर वाला दिखाया गया राम के साथ, वो दिखाया गया एक दूसरे कुमार को काले कपड़े पहना हुआ, क्या ये जो राम के साथ जो भाई दिखाया गया, वैसे शास्त्रों में दिखाते हैं जब राम का जन्म होता है ना तो चारों भाई इकट्ठे जन्मे, तो मतलब सत्य में तो राम के कोई भाई होते ही नहीं है। ये जो स्वर्ग दिखाया गया ये कब की यादगार है, संगम की, क्योंकि सत्य में कोई 4-6-8 बच्चे होंगे क्या एक राजा के,
सतमू तो गाँव है ही नहीं।
सतमू तो एक बच्चा एक बच्ची। तो ये चार भाई जो दिखाए गए हैं वो कहाँ के यादगार है? संगम की स्वर्ग की बात बताई, संगम की यादगार बताई, फिर जो राम के साथ जो भाई दिखाए गए राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, ये वही आत्मा है जो चार धर्मों का बीज है। राम वाली आत्मा देवी देवता सनातन धर्म का बीज है, भरत का पांच बजाने वाली आत्मा मतलब इब्राहिम का बाप, इब्राहिम का बीज, इब्राहिम को जन्म देने वाला, और लक्ष्मण का पांच बजाने वाली आत्मा मतलब महात्मा बुद्ध का बीज, और शत्रुघ्न का पांच बजाने वाली आत्मा क्रिश्चियन धर्म का बीज। ये चार जो है चार धर्मों के बीज है, क्योंकि चार धर्मों में से सारे धर्म निकलते हैं। ये जो 76 में ये जो राम के जो भाई दिखाए गए हैं, ये पहले तो बनते हैं सहयोगी। क्या 76 में जब ये निकलते हैं तो ये सहयोगी बनते हैं, बाद में क्या हो जाता है कि जितना इन्होंने सहयोग किया, जितनी इन्होंने सर्विस की, उतनी डिसर्विस कर देते हैं। हाँ, इसलिए बाबा बोलते हैं सतगुरु निंदक ठहर न पावे। बाबा मुरली बोलते हैं उन सन्यासियों के पास कौन जमीन जायदाद मकान दुकान है जो कहते हैं सतगुरु निंदक ठहर न पावे, ऐसे ही डराते रहते हैं। उनकी तो बात ही नहीं है, बात है यहाँ की कि जो अभी निश्चय पत्र लिख करके देते हैं, आपने तो अभी निश्चय पत्र लिख करके नहीं दिया है ना, आप तो जब वहाँ पर जाएंगे, जब आप मिलेंगे मम्मा बाबा से, तब आप, वैसे तो जो होशियार बच्चे होते हैं वो पहले ही निश्चय पत्र लिख देते हैं जो बाबा बोलते हैं बांधोली माताओं के लिए, कि बांधोली माताएं बोलती है बाबा हमने दूर से ही आपको पहचान लिया, हमको निश्चय हो गया मैं आपकी हूँ बाबा, आप मेरे हो। क्या आप तो उस लिस्ट में अभी आए नहीं, आपने तो निश्चय पत्र लिया है? तो ब्रह्मा बाबा क्यों लिखवाते थे?
आपकी
कैसे कर रही
है? आपकी शादी माननी है, आपने कहा नहीं जाओ, नहीं गए, आपने कहा जाना ही जा, हम आगे आपने और तो नहीं क्या कहा था, हम भूल मानिए।
आपकी कैसे तो हो रही, आप ऐसे शब्द का यूज करिए, ऐसा संशय वाला शब्द का यूज
नहीं है, ये तो अभी जमीन नित्य की बात है। क्यों मैंने आपसे क्या कहा, मैं क्या मैं आपको अपनी सूच नहीं आ रहा कि मैं बिना सूच के पढ़ने के लाभ ही नहीं पीता हूँ, समझे मेरी बात, तो मैं यहाँ तक आता हूँ इसके बाद कोई निश्चय तो है, लेकिन पहले लाभ भी मैं जिला सोचते नहीं कि सवाल इतना मेरा है, आपको बता रहा हूँ मैं जहाँ हूँ वही हूँ, अब यहाँ से यही हूँ,
यहाँ का पानी भी बहुत वैल्यूएबल
है, अमृत है, इसलिए आप नीचे से आ रहा हूँ, खालों के लिए यहाँ आपको धोखे में रखता हूँ, मैं किसी को धोखे में रखता हूँ।
बाबा की बात बताइए, हम तो आपको सही रास्ता ही बताएंगे,
आप पूरा सही जा रहे हैं और हम उसको सही मान रहे हैं, ये आपकी रास्ते।
तो बाबा ने मुरली बोला है कि बाबा निश्चय पत्र लिखाया करते थे, क्या निश्चय पत्र क्यों लिखाते थे? कि आगे चलकर तो ऐसी परिस्थिति आए तो उन बच्चों को दिखाया जाए, हाँ देखो तुमने
वो भागे,
उनको तो भाग्य तो शेर के पंजे में तो कोई नहीं कर सकता, क्या
अंदर मन खाएगा, जो खुद जब आदमी गलत जाएगा उसको मन खाएगा, लिखा
हुआ जो नियम है ना,
नियम आप
ऐसा मत बोलिए, हम जो कहेंगे सो थोड़े, हम जो बाबा जो बाबा बोलेगा तो हम आपको सुनाएंगे,
बाबा को जो कहेगा हम पंचा के मिले लगा देंगे,
ये आपने विषय की बात की, तो बताया तो बाबा ने बताया कि सतगुरु निंदक ठहर न पावे, मतलब जो सतगुरु जो आपने कहा ना भाग गए वो भागेंगे कहाँ तक, मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक, क्या कगार में तो आ ही जाएंगे, वो जाएंगे कहाँ, वाले का भट्टी
तो
है कि जाएंगे
कहाँ, मुल्ले
मुसलमान क्या होता है,
हाँ तो वही सारा पक्का हो
तो ऐसी आत्मा भी तो यज्ञ का आपको जहर के जो तुम्हें इतना विचार
बताया
आग नहीं सकती है। हाँ वो फिर आएंगी जाएंगी कहाँ हट्टी तो है किए तो मतलब सतगुरु निंदक थोर ना पावे तो वो जो थोर जो विनाश के पीरियड में जो ये निंदा के पात्र बन जाते हैं निंदा कराने के निमित्त बन जाते हैं माना सर्विस भी करते हैं सर्विस के साथ साथ जिस सर्विस जो करते हैं माना भगवान का नाम बदनाम करते हैं एक तरफ निश्चय पत्र लिख करके देते कि हमारे मत पिता है पर ऊपर से उनके प्रति ब्लैक नजर रखते हैं आए तो के लिए बताया सतगुरु निंदक थार न पावे तो विनाश के पेड़ में ऐसी आत्माएं उनको विनाश के पेड़ों उन खंडों में धकेला जाएगा जब विनाश की ऐसी काली घटा चाहेगी क्या चारों तरफ काली काल मन रहेगा ऐसे दर्दनाक सीन में उनको क्या कहा जाएगा कि अब तुम उन खंडों में जाओ और उन आत्माओं को उठाओ जो इस्लाम धर्म की बीज होगी उसको कहाँ पर डाला जाएगा अरब कंट्री में जो बौद्ध धर्म का बीज होगा उसको कहाँ डाला जाएगा चीन जापान वर्मा मलाया में जो क्रिश्चियन धर्म का बीज होगा उसको कहाँ डाला जाएगा अमेरिका यूरोप मतलब कहने का यह है कि विनाश के पेड़ में उस समय इनको उन खंडों में भेजा जाएगा तो चारों तरफ विनाश की लीला होगी दर्दनाक सीन होगा लेकिन फिर भी परमात्मा की इनके ऊपर छत्र छाया रहेगी क्योंकि क्षत्रिय है ना क्या क्षत्रिय धर्म की आत्मा है ना है तो भले वो उनके ऊपर और धर्मों का छिलका चढ़ गया लेकिन छिलका क्या कर देता है शिव बाबा अच्छी तरह ज्ञान दंडों की पिटाई कर करके उनका छिलका सारा उतार देता है क्या बढ़िया क्या बन जाते हैं चावल बन जाते हैं आत्मा रूपी चावल बन जाते हैं कहते ना दो पाटन के बीच में साबुत बचे ना कोई साबुत तो बचेंगे नहीं दो पाट कौन से हो गए दो पाट मतलब सृष्टि रूपी वृक्ष के मात पिता उन दोनों के पाटों के बीच में क्या होगा कितना ही पड़ेगा तो देर रात का छिलका कैसे उतरेगा फर्स्ट क्लास पाउडर कैसे बनेगा कैसे उतार तो इस तरह जो है वो बताया कि उसमें जो पहला दिखाया गया वो इस्लाम धर्म का बीज है जो लक्ष्मण का पाठ बजाने वाली आत्मा है वो इस्लाम धर्म का बीज है सॉरी हाँ भरत का पाठ बजाने वाली आत्मा
क्यों वहाँ अभी उसको मैं जो अपने दिमाग में गा रहा हूँ ना क्यों वही क्यों वही कश्मीर से आया वो आज तक दर्ज करते हैं आज
तो वो जो है भरत का पाठ
राजकोट किया नहीं वो गुण बन गया
भरत का पाठ बजाने वाली आत्मा जो है वो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है तो इस्लाम धर्म ये काले कपड़े पहने आए हुए दिखाए हैं ना इसको क्या तो काले कपड़े जो है वो कौन से धर्म ज्यादा चलते हैं
इस्लाम
धर्म है और एक हमारे यहाँ देवी भी पूजी जाती है कैसी देवी होती है काले कपड़ों वाली महाकाली क्या काली नहीं महाकाली तो महाकाली का पाठ बजाने वाली आत्मा जिसके लिए बाबा ने मूल बोला शुरू में बंगनिया निकली शुरू शुरू में आपने तो साकार मूल्य पढ़ी ही नहीं ना हाँ तो अब पढ़ना आप अच्छी तरह अध्ययन करना तो बताया कि शुरू में भंगनिया निकली शुरू शुरू महामुरली बोलते थे अब वो बाबा से आकर के गले लग जाती थी तो जैसे आज में भंगनिया निकली ऐसे अंत में भी भंगनिया निकलती है क्या बंगनिया किसे कहते हैं? बंगी का काम क्या होता है? शूद्र वो तो ठीक, उनका धंधा क्या होता है? गंध उठाना, क्या कचरा उठाना। जिसने कचरा उठाया तो बाबा तो बोलने बोलते ना, सागर में क्या है? रतन भी है तो कचरा भी है। तुमको क्या चाहिए? तुमको रतन चाहिए या कचरा चाहिए? क्या चाहिए? तो गहरे में तो जाना पड़ेगा ना, तब तो मिलेंगे ना रतन। बिना गहराई के जाने के रतन कैसे मिल जाएगा? हाँ, वो बताया कि वो कचरा हाथ में लिया उसने, इसलिए नाम पड़ गया महाकाली। क्या उसकी शक्ल भी कैसी दिखाता है? भयानक। कहते महाकाली ने क्या किया, शंकर जी के ऊपर पांव रख दिया। जब पांव रखा उसने देखा तो शंकर जी है, मेरा पति है, तो उसकी क्या निकल आई? जीभ निकल आई बहुत लंबी। ये मैंने क्या किया? तो कहने का भाव यह है कि वो महाकाली का पाठ बजाने वाली आत्मा, वो भी इस्लाम धर्म से कनेक्टेड आत्मा होती है। 76 में वो सहयोगी बनती है। क्या? शुरू शुरू में सहयोगी बनती है, लेकिन क्या होता है, भंगी पीछे पड़ जाते हैं। क्या उनके अंदर क्या संकल्प आने लग जाता है? भाई देखो, हम जब निश्चय दे दिया कि हमारा बाप है, हमारा जो भगवान है, सब कुछ है हमारा, तो निश्चय हो गया ना, वो जैसे चलाएगा हमको वैसे चलना चाहिए। तो फिर हमें दूसरों की मत तो नहीं सुननी चाहिए ना, तो ऐसा ही हो जाता है। 76 में एडवांस पार्टी में संगठन बनता है, वो आत्मा सहयोगी भी बनती है और फिर उसके बाद फ्रंट में खड़ी हो जाती है। तो उसके साथ जो भी होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं? विरोधी हो जाते हैं। तो इससे दिखाया, वो उनके धर्म में जो जैसे हमारे यहाँ मंदिर बनते हैं, ऐसे उनके धर्म में क्या बनती है? मस्जिद बनती है। और सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पर है? पक्का में कहाँ पर है? जामा मस्जिद कहाँ पर
है?
सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद कहाँ पर है? हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे। दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो मशहूर है।
जामा मस्जिद
आप दिल्ली में रह करके दिल्ली की जामा मस्जिद के बारे में नहीं जानते?
तो
नाम भी काम के आधार पर पढ़ते हैं, उनके शास्त्र का नाम भी काम के आधार पर, उनकी मस्जिदों का नाम भी काम के आधार पर। जैसे हमारे यहाँ शास्त्र का नाम पड़ा गीता, माना भगवान ने जिसके गीत गाए। बाप बोलते हैं सर्व शास्त्र मई श्रोमणी गीता, बाकी सब क्या उसके बाल बच्चे हैं। तो जरूर वो गीता माता होगी ना साकार में, कोई कागज पत्थर को तो बाबा बोलते नहीं। एक बार मुझे बोलते हैं गीता तू सच्ची गीता, माने जिसके अंदर सच्चाई है उसको परमात्मा ने क्या नाम दिया? गीता। भगवान ने भी उसके गीत गाए, ऐसे उनके धर्म शास्त्र का भी नाम क्या पड़ता है? पुराण। कु माना खराब और आर मतलब राम माने गंदी राम। तो उनके शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कोई एक पति मर जाए तो राण कही जाए, और जिसके पतियों का कोई गिनती ही नहीं तो उसे क्या कहेंगे? तो उनके शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि ढेरों शादियां करो। क्या? तो माना व्यभिचार जो चलता है वो काम के आधार पर क्या पड़ता है? नाम पड़ता है। शास्त्रों में धर्म जो धारणाएं जो है उनकी, उन्हीं के आधार पर उनके धर्म शास्त्र का नाम पड़ गया। तो इस तरह जो है उनके यहाँ के जो जैसे हमारे यहाँ मंदिर होते हैं, ऐसे उनके यहाँ क्या होती है? मस्जिद। मस्जिद का मतलब वो भी कौन सी? जामा मस्जिद। तो वो जो सहयोगी बनती है आत्मा, वो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड आत्मा है। क्या? इस्लाम धर्म का बीज, बीज रूप आत्मा, तो वो जब सहयोगी बनती है उस समय, तो और जितने दिल्ली में जो भाई बहन होते हैं वो विरोध करने लग जाते हैं कि भाई ये जो आप यही गीता पाठशाला में रहेगी, हमारी गीता पाठशाला में भी आकर के रहो। तो कहने का भाव यह है कि जब सरेंडर तो हम एक जगह हुए थे, सब जगह हुए, तो जैसे जिसके आगे सरेंडर हुए वो जैसे चला है वैसे हुए चलना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, उस समय समझ में पूरा ज्ञान नहीं था, जैसे शुरू में ज्ञान नहीं था, ऐसे 76 में इतना डीप नॉलेज नहीं थी, तो जिद कर ली। क्या तो जिद की, तो नाम पड़ गया जा मा मिस जिद। क्या जिद करने वाली माँ और मिस तो कन्या आई, लेकिन कहते हैं ना माता, माँ तो माता ही बोलते हैं, तो जिद करने वाली मिस तू अब जा, तो नाम पड़ गया जा मा मिस जिद। तो इस तरह जो भरत का पार बजाने वाली आत्मा ना, इस्लाम धर्म का बीज, ये रुद्रमाला के, रुद्रमाला की कहानी बता रहा है ये। अगला है लक्ष्मण, तो वो तो बहुत धर्म से कनेक्टेड आत्मा है। तो बौद्धी जो होते थे वो इस्लामियों के और क्रिश्चियन के प्रभाव में आ गए, इसलिए बाबा मुरली बोलते हैं इस्लामी बौद्धी और क्रिश्चियन तीनों को क्या बोल देते हैं, यादव बोल देते हैं, यादव बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं इससे, क्योंकि वो बौद्धी जो प्रभाव में आ जाते हैं उनके, जब प्रभाव में आ गए तो ना इधर की बोलेंगे ना उधर की बोलेंगे, तो उसका मतलब क्या हुआ, संशय में है। तो इस तरह जो है वो बुद्ध धर्म को पार बजाने वाली आत्मा माना लक्ष्मण, वही तो उसको सहयोगी दिखाते हैं, तो सहयोगी होता है बुद्धि से, तो सहयोगी होता है, लेकिन हाँ हिम्मत नहीं है उसके अंदर मुकाबला करने की। अगला है क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन धर्म
प्रकार में है
ये चारों आत्मा राम के भाई बताए ना, 76 में जन्म लेते हैं, हाँ आप भी हैं, वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म उनका 76 मना, राम वाली आत्मा से वो एडवांस नॉलेज लेती है, डायरेक्ट नॉलेज लेती है, क्यों नहीं होगी। बाबा ने मुरली बोला है जगन्नाथ के मंदिर में चावलों का आटा पकाते हैं और उसमें चार भाग हो जाते हैं, तो ऐसे ही जगन्नाथ के मंदिर माने जगन्नाथ का पार बजाने वाली आत्मा वो राम वाली आत्मा। तो जब 76 में बुद्धि रूपी बर्तन में आत्मा रूपी चावल पकते हैं और योग अग्नि और ज्ञान जल, नीचे से योग अग्नि लगाई जाती है ऊपर से ज्ञान जल डाला जाता है, तो पक जाते हैं आत्मा रूपी चावल। जब पक जाते हैं उसके बाद वो चार भाग हो जाते हैं, चार भाग का मतलब चारों धर्मों की आत्माएं अलग अलग हो जाती हैं। राम के जो चार भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, वो चारों चारों दिशाओं में हो जाते हैं। तो इस तरह जो है ये चारों भाई होगी। वैसे तो ये हो गया कि आदि में भी थे जो बाबा मुरली बोलते हैं कि बंगाल में चार घोड़ों वाली गाड़ी का बहुत क्या था, बहुत मान था। अजीत भाई सो जाओ, कहाँ की बात चल रही है, बंगाल, बंगाल में चार घोड़ों वाली गाड़ी का बहुत मान था। राजाएं लोग जो होते थे चार घोड़ों वाली गाड़ी के ऊपर क्या करते थे, सवारी करते थे, घूमते थे। तो जो चार अश्व है वो यही अश्व है, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, ये चार अश्व है, चार घोड़े जो दौड़ में पीछे दौड़ता। चौथे नंबर का जो दिखाया गया भाई शत्रुघ्न, तो शत्रुघ्न का जो पाठ बजाने वाली आत्मा है वो क्रिश्चियन धर्म से, क्रिश्चियन धर्म का बीज। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा कि जो चौथे नंबर का भाई खड़ा हुआ है वो हाथ जोड़े हुए खड़ा हुआ है,
बाबा ने मुरली बोला है जिन कर्म इंद्रियों से जो जो पाप किए वही वही कर्म इंद्रिया क्या होगा काटी जाएंगी। जिन्होंने कुदृष्टि कन्याओं माताओं के प्रति चलाई उनकी आंखें फोड़ी जाएंगी। जिन्होंने अपशब्द यूज किए उनका मुख बंद उनकी जीभ काटी जाएगी। जिन्होंने जो जो कर्म इंद्रिया से जो जो काम किए वही वही कर्म इंद्रिया काटे और जिन्होंने बाहुबल चलाया तो उनके उनका क्या किया जाएगा उनकी शरीर उनकी भुजाएं क्या हो जाएंगी कट जाएंगी। तो जो बाबा ने बोला है धर्मराज की सजाएं है जो बोला है तो जरूर संगम की ही बातें है ना। तो यहाँ पर दिखाया गया चौथे नंबर का जो भाई बैठा हुआ हाथ जोड़े हुए क्योंकि बाबा भी मुरली बोलते हैं बाहुबल वाले विनाश को पाएंगे और योगपाल वाले विष्णु की बादशाही पाएंगे। तो बाहुबल का प्रयोग जो है जिसने किया क्या जिसने बाहुबल का प्रयोग किया वो कौन से धर्म की आत्मा है कौन से ऐसे धर्म है जिसमें बाहुबल का प्रयोग किया जाता है क्रिश्चियन क्या क्रोधी जो क्रोधी होगा तो बाहुबल भी चलाएगा। सबसे ज्यादा क्रोध किसके अंदर होता है क्रिश्चियन धर्म की आत्मा। तो क्रिश्चियन धर्म का जो बीज है उसके अंदर भी वही गुण धर्म होंगे जरूर। तो इस तरह जो है वो जो 76 में जो स्थान बनाया जाता है क्या भगवान जो घर रचता है घर को चार दीवारी को तो नहीं कहा जाता है घर का मतलब गृहिणी को ही घर कहा जाता है। तो भगवान ने जो घर बनाया माना प्रयोग सहयोगी सहयोग सहयोग के लिए हाँ सहयोगी बनाया तो उस घर को क्या किया उस आत्मा ने क्या किया हाँ उखाड़ा। तो जो उखाड़ा तो टूट गया घर तो क्या जैसे मान लीजिए किसी बने बनाए घर दो प्रेमी होते हैं ना तो दो प्रेमियों के बीच में कोई नमक डाल दे तो क्या होता घर तो उखड़ जाएगा ना। तो ऐसा ही हुआ कि उस समय क्या हुआ संगठन में क्या किया विस्फोट कर दिया बिगड़ डाल दिया। तो बिगड़ डाला क्या डाला कि हे भगवान के बने बनाए घर तो क्या हो जा गिर जा और गिर जा की धूली रमा दी उसने तो घर गिर ही गया वो संगठन टूट गया जो गीत बना टूट गई है माला मोती बिखर गए और दो दिन रहकर साथ ना जाने किधर गए। फिर ये भी बोला जैसी इन पर बीती और किसी पर ना बीते क्योंकि शुरुआत थी मुकाबला भी इन्होंने किया उस समय सारी ऐसे थे और फिर भगवान से मुकाबला करना शुरू कर दिया माना भगवान उसी भगवान से जन्म लिया जैसे दिखाते हैं क्या दिखाते हैं भस्मासुर को क्या दिखाते हैं भस्मासुर ने क्या किया शंकर जी से वरदान लिया है और क्या वरदान लिया था उसने हाँ जिसके सिर के ऊपर मैं हाथ रख दूं वही क्या हो जाए भस्म हो जाए। तो उसने क्या तैराकी करी क्यों ना मैं भगवान के ऊपर ही हाथ रख दूं क्या कोशिश तो की ना उसने तो जिससे ज्ञान लिया उसी के सर के ऊपर क्या होगा चर बैठे। ऐसे भी होते हैं उन्हीं से ज्ञान लेते हैं और उन्हीं का फिर क्या करते हैं उन्हीं का मुकाबला करते हैं उनको बाबा बोलते हैं भस्मासुर भस्मासुर क्या। तो आए थे भस्मासुर जो भगवान के ऊपर भी हाथ रखने लग जाते तो भगवान फिर क्या करता मोहिनी रूप धारण करके उसका हाथ उसी के सर के ऊपर रखवा देता वो खुद ही भस्म हो जाए। दूसरों को भस्म करने वाले क्या हो जाएंगे खुद ही भस्म हो जाएंगे दूसरों का घर उखाड़ने वाले उनके घर भी क्या हो जाए उखड़ जाएंगे ना। इसलिए उस धर्म में भी यादगार क्या बन जाती है जैसे उस धर्म में पड़ गई जामा मस्जिद क्या ऐसे उस घर का भी नाम पड़ गया गिरजा घर क्या माना उनके कभी घर बनते ही नहीं उनकी जो चर्च होती है ना, चर्च बोलते हैं, चर्च में चर्चा किसकी करेंगे? चर्चा उसी की करेंगे, उस एक की करेंगे। और फिर इसी तरह जो है वो घर भी उनका, उनका भी घर टूट जाता है। इसलिए यहाँ पर चार दिखाए गए और एक युगल दिखाई नहीं दी। क्यों? कि उसने भगवान के बने बनाए घर को तोड़ा। आज भी क्रिश्चियन से क्या होता है, उनकी मैरिज जो है सक्सेसफुल नहीं होती है। क्या होता है? कंपेनियन बनाएंगे, आज शादी करेंगे और कल डाइवोर्स दे देंगे। पता नहीं दिन में कितने डाइवोर्स देने होंगे। तो मतलब वो उनके धर्म में ऐसा क्या हुआ?
विशेषता इतनी है, अब
मतलब कहने का है, उन्होंने भगवान के बनाए घर को उखाड़ दिया, तो फिर उनके घर भी बनते नहीं है। हाँ, इसलिए उनके भी घरों का नाम पड़ जाता है। उनके जो गिरजा मंदिर है उनका नाम भी पड़ जाता है गिरजा घर। तो इसलिए वो आठवें नंबर का जो अष्ट रत्नों में नहीं आता। क्या ये है अष्ट रत्न बनने वाली आत्मा? जो बाबा मुरली बोलता है सौ की माला, तो वो तो आठ नारायण बनने वाले हैं। वो अष्ट रत्न नहीं है, वो सप्तऋषि है। वो कम जन्म लेने वाली नारायण बनने वाली आत्माएं हैं। सत्यु के आठ नारायण बनेंगे, सत्यु के आठ नारायण अलग। और जो ये संगम की जो दिखाए गए हैं, ये अष्ट रत्न अलग। आठ नारायण जो होते हैं वो अलग। हमारे यहाँ अष्ट नव ग्रह की पूजा होती है ना, नौ रत्नों की अंगूठी पहनते हैं ना, तो नवरत्न, तो ये नौ रत्न बनने वाली आत्मा, उनमें से एक है वैल्यूलेस। क्या माना? जो शत्रुघ्न का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, वो जो है वो डिस्ट्रक्शन करने वाली है। तो कहते हैं भगवान से कामी भी प्राप्ति कर लेता है, क्रोधी भी प्राप्ति कर लेता है, लेकिन जो अहंकारी होता है उससे भगवान, वो भगवान से प्राप्ति नहीं कर पाते। क्योंकि भगवान को तो प्रेम में बस करते, इसलिए कहते हैं ना भगवान जो है प्रेम में बस हो जाता है, लेकिन अहंकार से हम उसको अपने बस में नहीं कर सकते। तो प्रेम में तो प्रेम नहीं कहते। तो इस तरह जो वो क्रिश्चियन धर्म की आत्मा बना, वो जो चौथे नंबर का जो दिखाया गया, बाहुबल ज्यादा चलाया। क्या? इसलिए बाहु बोलते ना क्रिश्चियंस में क्या होता है, क्रोध की प्रवृत्ति आगे जगह बड़ी जोर शोर से होनी है। तो ये क्रोधी होंगे तो जरूर बाहुबल तो चलाएंगे। तो इस तरह जो वो उनके धर्म में भी नाम पड़ जाता है गिरजाघर। तो इस तरह जो ये नौवा जो है वो अष्ट रत्नों में नहीं आता है, वैल्यूलेस रत्न। हाँ, वैल्यूएबल की वैल्यू कब हो जब उसमें वैल्यूलेस भी हो। इस तरह ये अष्ट रत्न बनने वाली आत्माएं दिखाई गई हैं। इसमें तो वैसे तीन दिन तो आगे चल करके होना ही है। तो ये है 21वां जन्म। क्या बोलकर से जी दिखाया गया रानियों का ग्रुप। जो रानियों का ग्रुप है, पहले तैयार होती है रुद्रमाला। जब रुद्रमाला तैयार हो जाती है फिर आती है विजयमाला। मारा चंद्रवंशी जो बाबा बोलते हैं वंश जो है किसी, जरूर किसी के नाम पर वंश पड़ा ना, जैसे रघुवंश। माना राजा रघु हुआ, उसके नाम पर पड़ा रघुवंश। चंद्रवंश जरूर चंद्रमा का पाठ बजाने वाली आत्मा कोई हुई, उसके नाम पर पड़ गया चंद्रवंश। कहते ना चंद्र देवताए नमा, सूर्य देवताए नमा।
रहा न बसर घट तेला, मतलब रावण की लंका के जितने भी सुंदर सुंदर वस्त्र थे, क्योंकि सारे सुंदर वस्त्र कौन ले गया रावण की लंका में? कहते देवताएं बैठ करके उनके रावण की लंका में जल भरते थे सब। तो उसने क्या कर रखा था, अपने अंडर में कर रखा था। तो जो सुंदर सुंदर वस्त्र थे वो सब उसकी पूछ पूछ मतलब देह मान की पूछ पूछ में लिपटा दिए, और ऊपर से जी का तेल डाल दिया और लगा दी आग। क्या आग लगा दी? लेकिन हुआ क्या, वही प्रहलाद वाला हिसाब। क्या जैसे प्रहलाद तो बच गया और होलिका जल गई, ऐसे ही हनुमान की पूछ में जितने भी देहमानी वस्तु माना, वो तो न्यारा और प्यारा, उसके जो लगाम में लग जाती है आत्मा, वो जलती रहती है। अब वो किसी को याद नहीं करता, वो तो न्यारी और प्यारी स्टेज दिखाई, तो वो जल जाते हैं सारे कपड़े, शरीर रूपी वस्त्र उस देह के लगाव में जल भुन करके क्या हो गए, राख हो गए, और उसकी पूंछ फिर भी नहीं जली क्या। तो पूंछ कोई आत्मा मुख से सर्विस करती है, कोई नैनों से सर्विस करती है, हनुमान की पूंछ ही दिखा दी, उसे पूंछ से ही सर्विस कर दी। बाबा ने उसकी पूंछ से ही सर्विस ले ली थी रावण की लंका को जलाने के लिए। कोई बात नहीं, आप पूछिए पूछिए।
हम हनुमान की पूंछ का मतलब मानते हैं हनुमान के भी फॉलोअर
है,
हम इसका मानते हैं हनुमान के भी फॉलोअर है, जो उसके पीछे लगने वाले हैं वो उसकी पूंछ जो उसकी पूछ करते, मतलब जो उसकी पूछ करते वो उसकी पूछ, इसलिए उसके कहने वाले जी
पूछ
महंगा जी।
तो उसके साथ हनुमान के साथ सहयोगी भी तो होते हैं, राम की सेना,
सहयोगी
सेना, बंदर सेना, बंदरों ने पुल बनाई, बंदरों ने पुल बनाई, भगवान ने बंदरों की सेना क्यों ली, इसलिए तो ली क्यों, भगवान को क्या मनुष्य नहीं मिले थे क्या। बंदर जो होते हैं वो अवगुणहीन होते हैं, निर्गुण बालकों की संस्था, महाकामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी पांचों विकार बंदर के अंदर होते हैं क्या। और रावण भी क्या था, रावण भी कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी, तो क्या होगा, लोहे से लोहा काटा जाएगा। तो बंदर भी विकारी तो रावण भी विकारी, तो विकारी से विकारी को क्या किया, टक्कर लेनी पड़े, विष से विष को मारा जाए, इसलिए राम ने किसकी सेना ली, बंदरों की सेना।
राम ने बंदरों की सेना ली,
क्योंकि मनुष्य जो होता है वो विकारी बनता है, तो इसलिए परमात्मा ने क्या किया, सेना किसकी ली, बंदरों की सेना ली। तो मतलब ये पूंछड़ी वाले जो हनुमान है इनकी भी हमारे यज्ञ के अंदर खूब खातरी होना शुरू हो जाती है। इधर दिखाया गया कि गणेश, इनको जो है वो पूछ तो नहीं है पीछे, लेकिन इनकी आगे सूंड बहुत बड़ी है और इनका पेट भी बहुत बड़ा है, माना बुद्धि रूपी पेट तो बहुत इनका बड़ा है, और देह मन की सूंड भी बहुत लंबी है। और एक बात और दिखाई जाती है, हाथी होता ना, हाथी, हाथी की जो आंखें होती है वो मद भरी होती है, माना ये सभा में ऐसे होते हैं विकारी नहीं होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो बात करने का एक ऐसा स्टाइल होता है कि सारी सभा के अंदर वो वाइब्रेशन, वायुमंडल ऐसी बात करेंगे जिससे वायुमंडल सारा क्या हो जाए, दूषित हो जाए, गंदा हो जाए। इसलिए हाथी की आंखें जो है वो रोटी दिखाता है, रोटी तो होती है, ये है दोनों, इसमें एक है कच्छवतार और एक है मत्स्यवतार क्या। ये आश्रमों के शुद्ध वातावरण में रहते हैं और खूब मछलियां खाते हैं क्या, जल के अंदर रहते हैं, और इनको बाहर निकाल दो तो ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए बाबा बोलता है मुझे राम कृष्ण जैसी आत्माएं तो धर्म का आधार लेती है, और ये कच्छा अवतार और मच्छा अवतार ये जल का आधार लेते हैं, माना उनको ज्ञान का शुद्ध वातावरण मिलता रहे, वायुमंडल माना सरेंडर वर्ग में अगर ये रहेंगे अंदर आश्रमों के वातावरण में रहेंगे तो ये ठीक रहेंगे, और जैसे ये बाहर मिलेंगे उनकी अवस्था ऐसी आत्मा गणेश का पाल बजाने वाली भी आत्मा ये हनुमान बहुत वो भी हमारे जैसे के अंदर बैठे हैं। आयसों की पूजा क्या होती है, ज्यादातर कन्या माताएं देखते करती, माताएं ज्यादा करती हैं, और उनकी पूजा जो करने वाले बैठे हुए हैं वो दिखाया गया गुडमुंडे सन्यासी या माया ने सारे बाल जो उनके मुड़ लिए, रह गई छोटी और उड़ गए बाल, मानो नाम मात्र के ब्रह्मा कुमार है बस, और उनके अंदर सब सब रंगीले हैं, पूरे रंगीले हैं। इस तरह जो है यदि के अंदर शुरू हो जाता है व्यविचार, फिर आगे आता है दृष्टि वृष्टि, क्या दृष्टिगत व्यविचार। बाबा ने मुरली बोला, भगवान के योग सिखाने स्वर्ग और मनुष्यों के योग सिखाने से नर्क बन गया। भगवान ने आकर के योग सिखाया तो दुनिया क्या बन गई, स्वर्ग बन गई, और मनुष्यों ने आकर के सिखाया तो नर्क बन गया। तो बाबा ने कभी भी किसी भी मुरली अथवा वाणी में ये नहीं कहा कि कन्याएं माताएं बैठ पुरुषों को बैठाकर उन्हें शरीर चक्षु से दृष्टि दान दिया करें, कोई मुरली में ऐसा नहीं था, क्योंकि भारतीय परंपरा तो ऐसी रही, सीता सावित्री राधा जैसी आत्माएं पर पुरुष को आंख उठा करके भी नहीं देखती थी। रावण की लंका में रहते हुए भी वो रावण की परछाई तक नहीं देखती थी, ऐसे भारतवर्ष की परंपरा, उस भारतवर्ष की परंपरा को ये विधर्मियों ने आकर के क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। इससे छोटी कन्याओं को बैठा देते हैं सेंटरों में और जात जात के गंदे से गंदे पुरुषों को बैठ करके दृष्टि का दान दे, तो इनके दृष्टि से क्या सृष्टि चेंज हो जाएगी। बाबा ने कोई मुरली में बोला कि कन्याएं माताएं बैठ करके जात जात के पुरुषों को दृष्टि दे, हाँ वो माता लगे बाबा ने कहा चेकिंग करने के लिए, वो बोलते हैं भाई कन्याएं हैं, कन्याओं को बैठ करके माताओं को बैठ करके दृष्टि दे, माताएं हैं तो भाई हैं तो भाइयों को बैठ कर दे, वो भी चेकिंग करने के लिए। तो बोलते हैं मम्मा बाबा भी तो दे देते थे, उनको ये नहीं पता कि मम्मा बाबा में तो परमात्मा शिव की प्रवेशता थी, वो तो पावरफुल सोल्स थी, उनमें तो प्यूरिटी की इतनी पावर थी। मम्मा वहां जब तक जीवित रहे तो क्या ये रावण राज्य चला, मम्मा वहां के समय जो है ये क्या कहते हैं ये धर्म सत्ता राज सत्ता अलग अलग हाथों में बटी हुई थी क्या, मम्मा वहां के समय में क्या सिंगल उपासना होती थी क्या। तो वो इस तरह बोल देती हैं। तो बाबा ने मुरली में बोला एक भाइयों के नाम पर दृष्टि देने का धंधा धर्मगुरुओं की मनमत है, शिव की श्रीमत नहीं है, शिव बाबा की ये श्रीमत नहीं है कि बैठ करके दृष्टि का लेन देन करो। बाबा तो मुरली में बोलते हैं इस समय सब की बैटरी खाली है, सन्यासियों की बैटरी भी खाली है, बाप के सिवाय कोई भी बैटरी को चार्ज कर ना सके, ये खुद सन्यासी है इनकी बैटरी तो खुद खाली हुई पड़ी है, तो ये किसकी बैटरी को चार्ज करेंगे, बैटरी चार्ज होगी तो दूसरों की भी चार्ज करेंगे, ये तो खुद ही डिस्चार्ज है, तो ये तो चार्ज करने काबिल है ही नहीं। जो खुद घर घाट छोड़ करके आकर के बैठ गए वो क्या बैठ करके दूसरों की बैटरी को चार्ज करेंगे। उन्होंने बोला कि मनुष्य योग सिखाकर रोगी बना देते हैं, बाबा के योग सिखाने से हम एवर हेल्दी बन जाते हैं, ये भी निशानी। तो खैर इस तरह जो है ये भी ड्रामा में होना कल्याणकारी है, अगर ऐसा नहीं होता तो बाबा को फिर दोबारा आने की जरूरत ही नहीं थी। अति का अंत करने के लिए इसलिए बाबा ने मुरली बोला व्यक्तवाणी में, बाप भी पाप में पाप बढ़ाने का रहम कर रहा है, क्या खूब करो पाप, जब पाप का गला भर जाएगा जल्दी भरेगा तो फिर जल्दी फूटेगा। दिखाया गया इसमें, यहाँ पर दिखाया गया ये ब्रह्मा कुमार घुटने टेक करके हाथ जोड़ करके गुरुजी के सामने बैठा हुआ, और ये गुरु जी कैसे हैं? ये रंगीले वस्त्रधारी हैं। क्या ये तो ब्रह्मा कुमार है और ये रंगीले वस्त्रधारी हैं। मतलब इनकी वाचा में एक पावर है, वो किसी भी रास्ते चलते हुए वो फर्स्ट क्लास व्हाइट ड्रेस पहना हुआ ब्रह्मा कुमार बनाने बहुत चाटू होते हैं। इनको यज्ञ के अंदर कोई सीट नहीं मिली हुई है, दो शब्द भाषण करने के लिए भी इनको स्थान नहीं है। जैसे आम जिज्ञासु बैठते हैं, आम स्टूडेंट बैठते हैं, ऐसे ये भी हैं। लेकिन क्या ये जिसको भी निकालते हैं ज्ञान में उसको अपने तक सीमित रख देते हैं। क्या तो मान लीजिए जैसे बाबा मुरली बोलते हैं बच्चे सेंटर खोलो सेवा करो, ये नहीं सुनेंगे। टीचर कहे कि भाई जी देखो बाबा ने ऐसा सा बोला है सेंटर खोलो, नहीं करेंगे। जो ज्ञान में उनको लेकर के आया जो गुरु वो अगर कहेगा कि भाई अब तो सेंटर खुलना चाहिए तो गुरु जी की बात जल्दी मान जाएंगे। तो ये गुरु और चेले का जो दिखाया गया साथ, ये भी चोली और दामन का साथ, ऐसा भी हर सेंटर में कहीं ना कहीं आप देखेंगे जरूर कि ऐसे गुरु और ऐसे चेले जरूर होंगे। क्योंकि बाबा ने मुरली में क्या बोला है, बाबा ने क्या बोला है कि टीचर तो एक ही है। अंदर से ये बुद्धि में नहीं आना चाहिए कि मेरा जिज्ञासु है, मेरा स्टूडेंट है, मैंने निकाला। अरे बाबा ने मेरे को निमित्त बनाया। क्योंकि अगर ऐसी भी भावना आई तो क्या हो जाएगा, अंदर अहंकार आ जाएगा। तो ऐसे भी ये भी केंद्र है, हर सेंटर पर आपको देखने में आएंगे। आगे दिखाया गया पांच तत्वों की पूजा, अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश, इन पांच तत्वों से बने हुए शरीर की पूजा। जो बाबा भी मुरली बोलता है शरीर की पूजा माना भूत पूजा। तो मतलब पांच तत्वों की जब पूजा शुरू होती है उसमें भी पांच तत्वों से बने हुए शरीर माना भूत पूजा। पुरुषों की पूजा जब शुरू हो जाती है, बाबा ने तो कभी नहीं कहा कि कुमारों को बाइलों को बैठ करके यज्ञ के अंदर सरेंडर करके रखने के लिए, कोई भी ऐसी वाणी में नहीं लिखा बाबा ने। कोई भी ना अव्यक्त वाणी में ना साकार मुरली में बाबा ने कभी नहीं बोला कि पुरुषों को सरेंडर होकर के रहना है। बाबा ने तो बोला कि तुम अपने को सरेंडर समझो। क्या पांडवों का काम तो है शक्तियों की रखवाली करना, उनको तो रखवाली करना है, वो क्या रखवाली करेंगे जो खुद ही अपनी रखवाली नहीं कर सकते, माना जो खुद सरेंडर होना चाहते हैं। तो वो जो सरेंडर वर्ग है उनमें जो पुरुषों की जब पूजा होने लग जाती है, तो जब पुरुषों की पूजा होने लग जाती है पुरुषों की भेंट करके माताएं खूब पूजा करती है, खूब उनके कपड़े धोएंगे, उनको खाना बना करके खिलाएंगे, तो उसका नतीजा दिखाया गया। जब पुरुषों की पूजा होने लग जाती है उसका नतीजा दिखाया गया। कन्याओं माताओं की वो तो बाबा ने मुरली बोला हट्टी कट्टी ब्राह्मणियां बैठ करके दूसरों से सेवा लेती है, बर्तन मंजवाएंगी, मालिश करवाएंगी। वास्तव में उनको हर काम खुद करना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी वो जो दिन रात फटकती रहे। तो इस तरह जो पूजा शुरू हो जाती भूत पूजा, तो उसका रिजल्ट दिखाया गया कामेशु क्रोधेशु। इसमें दिखाया कि ये जो माता है या कन्या कोई भी है, व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है, क्या ये सब चित्र बाबा ने पहले से ही टचिंग दिला दिया कि इस तरह ये ऐसे ऐसे दुर्योधन दुशासन में यज्ञ के अंदर आएंगे और ये ऐसी एक्ट करेंगे। क्योंकि बाबा तो त्रिकालदर्शी है, बाबा को ये सब टचिंग हो रही थी, ये सब एक्ट होनी है, इसलिए ये चित्र पहले से ही तैयार हो गया। बनाया। तो यहाँ पर दिखाया गया है ब्रह्मा कुमार, दिखाया गया व्हाइट ड्रेस। आजकल सीढ़ी के चित्र में यह ड्रेस नहीं दिखाता है, उसने अपनी ड्रेस ही चेंज कर लिया। क्या दिखाया गया? गांधी जी की टोपी जैसे टोपी पहनी हुई है उसने, चूड़ीदार पैजामा पहना हुआ, मतलब व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है, हाँ? और उसके हाथ में क्या है, हाथ में क्या दिखाया गया? कटार दिखाई दिए, नैन कटार कहो या कान कटारी कहो। और दूसरे हाथ में क्या पकड़ रहा है उसने, उसने दूसरे हाथ में क्या पकड़ रखा है? अरे जल्दी देखिए ना, दूसरी हाथ में जो है वो साड़ी पकड़ रखी है, और पांव से पांव माना बुद्धि रूपी पांव उसने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। देखने के लिए तो बहने बैठ करके मुरली चलाती है सेंटर में, लेकिन अंदर से जो सारा कंट्रोल किसका चलता है? भाइयों का चलता है, पुरुषों का चलता है। पुरुष वर्ग जो है वो हर बात में मुखिया बना पड़ा है, तो जहाँ पुरुष होंगे निमित्त तो वहाँ क्या होगा, वहाँ तो गड़बड़ होगी। इसलिए बाबा ने मुरली बोला कि शक्तियों को आगे रखना है, पांडवों को गाइड नहीं बनना है, कन्याओं माताओं को गाइडेंस नहीं देना है, गाइडेड श्री बाबा। पांडवों को क्या बनना है, गार्ड बनना है। गार्ड जैसे रेल के डिब्बे में कहाँ पर होता है, लास्ट में होता है। शक्तियों की रखवाली करनी है, लेकिन ये क्या करेंगे शक्तियों की रखवाली? इसको दिखाया गया और उसकी साड़ी तो व्हाइट ही थी, लेकिन क्या कर दी उसने, मैली कर दी। अब वो क्या बोल रही है, हाय श्री बाबा बचाओ। अब ये हाय श्री बाबा बचाओ की गुहार कोई दुनियावी कन्या माता लगाएगी, या हमारे यज्ञ के अंदर ही कोई है? ऐसी ऐसी द्रौपदियां भी हैं, ऐसे ऐसे दुर्योधन दुशासनों के सिंगल में फंस जाती है, वो पुकारती है हाय श्री बाबा बचाओ। जैसे दिखाते हैं द्रौपदी को क्या किया दुशासन ने, नग्न करने की कोशिश किया, लेकिन भगवान ने क्या किया, उसको चीर कितने दे दिए, कितने चीर दिए, 21 जन्मों के लिए। 21 जन्मों के लिए तुमको कोई जल रहा है अंदर, वो तो नहीं जल रहा है
बाबा जी, बहुत ही दुख देखते हैं आंखें बंद करके भाई।
बाबा आंखें बंद करके नहीं खोल बैठा हुआ, आंखें तीसरी आंख खोल के बैठा हुआ, तभी तो
देख रहा हूं। बहुत बहुत पूछ रहे हो जामुना पास का मुंह का समय इसको और
बाबा ने मुरली
बोल आगे स्वाणी में बोला है, हम तो सोचते वहां पर बिल्कुल सब सही है, आप नहीं मतलब बाबा की कहते हो
आप
सही
हूँ
ये आप हैं, हम तो
देखो हर तरह की आत्माएं हैं।
तो
बाबा ने मुरली बोला कोई शूद्र कुमारी बनेगी, कोई ब्रह्मा कुमारी बनेगी। बाबा बैठ करके अहिल्याएं गणिकाएं पूजाएं वैश्याओं को आकर के बैठ करके सुनाता है पढ़ाता है। अकासुर बकासुर कंस जरा सिंधी ये सब नाम यहाँ के हैं, कई बार बाबा ने मुरली में बोला। तो इस तरह जो है वो ये गुहार कोई दुनियावी कन्या माता की आवाज नहीं होती, बाबा को तो वो जानते ही नहीं,
पहचानता वही
वही शब्द कहेंगे ना। तो इस तरह ये दिखाया गया दुर्योधन दुशासन, इसलिए बाबा बोलते हैं दुर्योधन दुशासन अकासुर बकासुर ये सब नाम यहाँ के हैं। इस तरह जब दृष्टि होगी तो प्रीति तो होगी होगी। बाबा ने तो ये मुरली बोला है कि संपूर्ण शिवलाई आज ही बनेंगे, जो अष्टरत्न बनने वाली आत्माएं हैं, आदि रतन तो इस तो अष्टरतन बनने वाली आप उनकी संपूर्ण शिवलाई बनेगी, बाकी सब चीज नंबर वार आदि रतन तो इष्ट तो अष्टरतन, जो आदि में थे वही आदि रतन, उन्हीं को अष्टरतन कहा जाता है। वो डायरेक्ट पैदा होते हैं, उनका मीडिया कोई नहीं बनता। तो इस तरह जो संपूर्ण शिवलाई आठ ही बनेंगे। हाँ बाबा तो मुरलियों बहुत बार बोलते हैं, और मोस्टली तो आप क्रिमिनल आई के ऊपर बार बार जोर देते हैं। कितने बार बाबा ने मुरली बोला है, अंगों में आंखें ही सबसे ज्यादा क्रिमिनल बनती है। ये आंखें कितना धोखा देती है, क्रिमिनल आई को ज्ञान से सिविल आई बनाना है, सारा मदार आंखों पर है। देखो ये बहुत धोखा देती है, आंखें बड़ा धोखा देती है, देखने से ही रफू चक्कर हो जाते हैं। इन आंखों को कब्जे में रखना है, जैसे और अंग है ऐसे नेत्र भी तो अंग है ना, तो उनको भी क्या करना है, अपने कब्जे में रखना है। ऐसा हाल हो जाता है तो समझो अति हो गई, अति का फिर अंत होना जरूरी है। ऐसे समय पर फिर परमात्मा को आना पड़ता है, जब पुकार लगती है हाय श्री बाबा बचाओ, तो कहते ना भगवान आया तो जरूर भगवान आएगा। कहते महाभारत लड़ाई लगी तो भगवान भी आया, तो अभी कौन सा टाइम चल रहा है, महाभारत का टाइम चल रहा है, तो वो नहीं है तो जरूर भगवान भी होगा। तो इस तरह दिखाया भूत पूजा का रिजल्ट ये निकलता है। फिर उसके बाद डूबिया कर देते हैं, जिन सेंटर में जो कन्याएं माताएं जो है जिनको बहुत मान देते थे, जब पता चलता है ये तो हमको भगवान से विमुख करने वाली है, तो उनको क्या करते थे, सागर में जाकर के डुबो देते हैं, नहीं डूबती तो फिर क्या करते हैं, पांव से डुबो देते हैं, माना बुद्धि रूपी पांव से भी उसको अलग कर देते हैं। आगे दिखाया गया है धर्म सत्ता राज सत्ता, ये दिखाया गया साधु समाज, यहाँ दिखाया गया कांग्रेस कौरव सभा, कि ये साधु समाज माना धर्म सत्ता भी, और ये कौरव कांग्रेसी ये है राज्य सत्ता भी, तो ये भी हमारे यज्ञ के अंदर ही चलता है। धर्म सत्ता भी अलग, राज्य सत्ता भी अलग, बाबा ने कहा कलयुग में आकर के धर्म सत्ता राज्य सत्ता अलग अलग हाथों में कट जाती है, जब राम राज्य होता है तब धर्म सत्ता राज्य सत्ता एक हाथों में होती है, और जब रावण राज्य शुरू होता है तो धर्म सत्ता राज्य सत्ता अलग अलग हाथों में बट जाती है। तो ये भी शूटिंग यहीं पर होती है, मम्मा बाबा के समय तो मम्मा बाबा ही यज्ञ के कंट्रोलर थे, धर्म सत्ता राज सत्ता एक के हाथ में थी, कोई भी किसी बच्चे को तकलीफ होती थी बाबा के पास जाकर के अपना सही से समाधान करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, अलग अलग जोनल इंचार्ज बन गई, जैसे उस दुनिया में पानी का बंटवारा हो गया, आकाश का बंटवारा हो गया, ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाता है, इतना पानी हमारा इतना पानी तुम्हारा, इतने हमारे सेंटर में जो मुरली सुनेगा वो तुम्हारे सेंटर में नहीं जाना चाहिए। तो मतलब भगवान को भी उन्होंने क्या कर लिया, धर्म के ठेकेदारों ने खरीद लिया जैसे। और तीसरा फर्क जो दिखाया गया वो दिखाया गया राज्य सॉरी कांटों के जंगल पर पड़ा हो, उसके पास ना तो धर्म सत्ता है और ना राज्य सत्ता है। कांटों के जंगल पर दिखाया गया है निर्धन भारत, दिखाया गया कांटे क्या कांटों की दुनिया में उसको दिखाया गया, और उसको भीख दे रहे हैं कौन, विदेशी, माना वही क्रिश्चियंस और इस्लाम धर्म के जो आत्माएं हैं वो उसको भीख दे रही है, लेकिन सिर के नीचे गीता रखी हुई है। कहते हैं लौकिक में जब ऐसी स्थिति आती है ना तो बच्चे भी साथ छोड़ देते हैं। जीवन भर साथ कौन निभाती है? गुरु के साथ जीवन भर साथ कौन निभाती है? हैं? स्त्री ही साथ निभाती है क्या? मतलब बच्चे भी भाग जाते हैं जो ऐसी पद्धति आती है, लेकिन अंत तक जो हो तो वही बताया कि उसके सिर के नीचे गीता पड़ी है, माना गीता माता का ही वही आधार रह जाती है। और उसके अंदर लिखा हुआ 5-year plan, जैसे हमारे यहाँ होता है ना पंचवर्षीय योजना, 10-वर्षीय योजना, 20-वर्षीय योजना होती है ना, ऐसे ही इसमें लिखा 5-year plan। तो 5-year plan माना 76 से लेकर के 81 तक का वो जो पीरियड है वो 5-वर्षीय योजना पूरी हो जाती है और भारत बैगर टू प्रिंस बन जाता है। फिर भारत किसी के अधीन नहीं रहता, वो स्वतंत्र हो जाता है, बैगर से प्रिंस बन जाता है। वो ही भारत प्रजापिता का पार्ट बजाने वाली आत्मा की तरफ इशारा दिया, उसको कोई सत्ता नहीं होती। तो वो 5-year plan पूरा जाता है 81 में। जैसे आपको बताया त्रेता के शुरू सचिन में रजोपदानता के शेर में क्या बना, सोमनाथ मंदिर, ऐसे त्रेता में भी 81-82 में सोमनाथ मंदिर बेहद का बनता है, वो तो हद का बना ये बेहद का। ऐसे ही द्वापर युग की शूटिंग में भी 92-93 में ब्रह्मा की जोर के द्वारा सोमनाथ मंदिर की स्थापना होती, कहाँ पर? दिल्ली में। क्या जिसने स्थापना की ब्रह्मा ना बड़ी माँ माना माता वही ब्रह्मा की फिर शुरू किया। लेकिन क्या होता है कलयुग के आदि में तो सोमनाथ मंदिर जो है वो लूट जाता है। कौन लूट करके ले जाते हैं? मुसलमान लूट करके ले जाते हैं। तो मुसलमानों से क्या करना पड़ेगा? तो बाबा ने बोला सोमनाथ जैसे अनेक मंदिर में मुसलमानों द्वारा लूट फूट मचाई जाती है। तो मुसलमान धर्म वाली आत्माएं जो वो क्या करती है, लूट फूट ज्यादा मचाती है। इसलिए क्या करना है? अलर्ट रहना है, कोई मुसलमान अंदर ना घुस आए। क्योंकि उस सोमनाथ मंदिर के जो पत्थर होते हैं ना, किस कलर में होते हैं वो पत्थर? सोमनाथ मंदिर जो पत्थर थे वो किस रंग के थे? लाल रंग के दिखाते हैं। उस पत्थर की भी लाखों लाखों रुपया वैल्यू होती है। तो जो हद में होता है तो ये हद में होता है। ये सब हमारी ही कहानी है, जो हम कर रहे हैं सोई दुनिया कर रही है। तो ये सीढ़ी के चित्र में दिखाया गया कि धर्म सत्ताधीश राज्य सत्ताधीश अलग अलग, जब धर्म सत्ताधीश अपनी मीटिंग करेंगे तो राज्य सत्ताधीश वालों को इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं मिलेगी, और जब राज्य सत्ताधीश मीटिंग करेंगे तो धर्म सत्ताधीशों को इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं। हमारा अलग अलग हाथों में बढ़ गई। और परमात्मा आकर के फिर धर्म सत्ता राज सत्ता एक धर्म एक भाषा की स्थापना फिर शुरू कर देता है गुप्त वेश में। क्या कहते हैं? बूढ़े ब्राह्मण के तने में आया। क्या? बूढ़ा माना अनुभवी। सबसे ज्यादा अनुभवी कौन? ब्राह्मण छोटी। पहला ब्राह्मण कौन? पहला ब्राह्मण ब्रह्मा। अरे प्रजापिता छोटी का ब्राह्मण। क्या? छोटी का ब्राह्मण है उसके ऊपर और कोई चोटी का भ्रमण नहीं हो सकता। चोटी के अंदर गोल गोल शिव बाबा दिखाते हैं, मन शिव बाबा उसमें प्रवेश करते हैं। वही ब्राह्मण पहला, जो पहला देवता, तो पहला क्षत्रिय, तो पहला पुजारी, वैश्य, तो पहला शूद्र बनता। तो जो ऊंच ऊंच बनते हैं इस तरह, जो ये रुद्र माला और विजय माला जो है 96-97 में क्या हो जाती है, प्रत्यक्ष हो जाती है। माना प्रत्यक्षता कब हो जाती है, दोनों मालाएं एक हो जाती है। उसके बाद फिर दिखाया गया, फिर तो संगम युग समाप्त और सतयुग शुरू हो जाता है। तो ये अंदर का जो दिखाया गया सतयुग की आठ गद्दियां, ये वही आत्मा है जो जनों के ऊपर दिखाए गए हैं। नारायण बनने वाली, वही नारायण बनने वाली आत्माएं सभी में आठ गद्दियां धारण करती है। पहली गद्दी तो सुखी होगी राधा कृष्ण वाली आत्माएं, माना उन संगम जी लक्ष्मी नारायण से राधा कृष्ण जैसे बच्चों का ही जन्म होगा, ये तो होगा संगम जी लक्ष्मी नारायण। और ये जो फर्स्ट गद्दी होगी वो जन्म किसे लेंगे, संगम जी नारायण से जन्म लेगी ना। ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्मा, इसलिए भगवान बुद्ध ने बोला तुम बच्चे ऐसा प्रचार करो कि मम्मा भाव तुम्हारे बारिश होकर बारिश बने। तो फर्स्ट गद्दी जो होगी कृष्ण की गद्दी होगी, और सेकंड गद्दी जो होगी वो होगी जिसने मम्मा बाबा की गद्दी हमारे यज्ञ में संभाली। हमारे यज्ञ में मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद गद्दी किसने संभाली, तो कुमार का विष्णु को संभाली उन्होंने। तो वही जाकर के राधा कृष्ण के बच्चे बनेंगे, माना सेकंड नारायण बनेंगे। और वो कहती भी है कि हम क्या बनेंगे, मम्मा बाबा के वारिस बनेंगे।
नहीं मतलब ये 2001 के बाद क्यों होगा,
2017 में कृष्ण का जन्म हो जाएगा, 2036 में कृष्ण गद्दी पर बैठ जाएगा, तो सचिव शुरू हो जाएगा ना। ये तो सचिव का पहले का हिस्सा है।
ये मेरा तो 2017 में स्वामी किसी जन्म हुआ
है,
किसी का जन्म 2017 में हुए थे। आपके साथ ये
हमारे सामने जो बाबा की मुरली के साथ
2020-25
वर्ष हो जाते तो बाहर मुझे बोले गद्दी पर,
2026 में तो वो ठीक है
गद्दी पर बैठते हैं। तो वो फिर गद्दी पर बैठती है 2036 में। उसके बाद जो बच्चे जन्म लेंगे जिन्होंने यहाँ पर मम्मा वहाँ की गद्दी संभाली, मम्मा वहाँ की गद्दी किसने संभाली, मम्मा की सीट किसने गेरी, कुमार का दादी ने, और बाबा की जो दिल पर जो चढ़ा वो कौन चढ़ा, तो वो इसे जा करके मम्मा वाला की गद्दी संभालेंगे। लेकिन वो कौन सा नंबर के नारायण होंगे, सेकंड नंबर के नारायण होंगे। तो उनको ये मालूम नहीं है कि जो देवताओं की संतान बनेंगे, माना मम्मा बाबा से जो जन्म लेकर के उनकी गद्दी संभालेंगे, वो तो सेकंड नंबर का नारायण होगा। और जो सेकंड नंबर का नारायण होगा द्वापर के पक्ष में क्या बनेगा, और जो धर्म जाएगा कम धर्म जाएगा। तो इस चीज का उनको ज्ञान नहीं है कि वो है कम जन्म लेने वाले, उनका एक जन्म कम हो जाएगा। सत्यु का फर्स्ट जन्म तो कम हो गया, एक जन्म कम हो गया, माना सिर्फ जन्म वालों को देवता नहीं कहते, पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा है उसको कहा जाता है देवता। कम जन्म लेने वाली आत्माओं को देवता नहीं कहा जाता, इस तरह इनका एक जन्म कम हो जाता है। इसी तरह जो भी सत्यु के ये नारायण क्या कहते हैं जड़ों पर बैठे हुए नारायण है, वो उसी हिसाब से फिर गद्दियां संभालते हैं। जो सत्यु के आठ नारायण है वो ही त्रेता में आकर के आठ गद्दियों के मालिक बन जाते हैं। जो आठवें नंबर का नारायण है वो कौन बनेगा, सत्यु में आठ नारायण है, ये जड़ों पर आपको समझाया, तो वही जो है वो नारायण बनने वाली आत्मा है, कम जन्म देने वाली। इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन शंकराचार्य मुस्लिम गुरु नानक आर्य समाज जी का आधार मूल, जो आधार मूल आत्मा है वही जाकर के सत्य में आठ नारायण बनेगी। माना आठवा नंबर का जो नारायण बनेगा वो आर्य समाज जी, क्या आर्य समाज जी के लिए बताया, आर्य समाज जी के लिए बहाने मुरली में क्या बताया, तो उसके लिए बाबा ने बोला जो आठवें नंबर का नारायण होगा उसके लिए बहाने मुरली में क्या बोला,
कि जो राजा लोग प्रजा से कर्जा लेते हैं, अभी देखो प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट कंगाल है। कौन सी गवर्नमेंट कंगाल है? जैसे उस गवर्नमेंट में क्या होता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किससे लोन लेती थी? निजाम से लेती थी ना, निजाम से लेती थी। निजाम से लोन लेती थी, माना उस समय क्या थी? प्रजा साहूकार है। थी हमारे युग में भी क्या कि प्रजा जो है, प्रजा जिसके लिए बोलता है राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। राम वाली आत्मा राजा भी बनती है, राम वाली आत्मा प्रजा भी बनती है, और फिर सत्य के लास्ट में क्या बन जाती है? साहूकार बन जाती है, किसी साहूकार के यहाँ जन्म ले लेगी। राधा किसी को जन्म दिया, उसके बाद उन्हीं के राज में धीरे धीरे वो जन्म ले लेंगी, फिर उसके बाद क्या होगा, वो साहूकार बन जाएगी। तो बाबा ने बोला कि प्रजा जो है वो राम वाली आत्मा से संगम कर दी, जो आर्य समाज का पाठ बजाने वाली आत्मा है, जो आखिरी नंबर का नारायण बनने वाली आत्मा है, वो क्या लेती है? कर्ज लेती है। यहाँ पर लेती है ज्ञान रत्नों का, यहाँ जो है वो ज्ञान रत्नों का उसके ऊपर कर्जा चढ़ता है, लोन चढ़ रहा है। प्रजा साहूकार मैंने राम वाली आत्मा इस समय ज्ञान धन में साहूकार है, और गवर्नमेंट हमारी कंगाल हुई पड़ी है, उनके पास ज्ञान रत्न है ही नहीं। तो गवर्नमेंट कंगाल है, लोन लेती रहती है, क्या ज्ञान रत्नों का लोन उनके ऊपर करता जा रहा है, लिटरेचर उनके पास पहुंचता जा रहा है, लेकिन जवाब एक भी बात का नहीं देंगे। ऐसे समझे जैसे कछुआ, कछुओं की पीठ में ज्ञान के डंडे ठोके जाओ, अब वो अपनी इंद्रियों से खोल करके क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा, मतलब उसके ऊपर असर नहीं पड़ता, वो एक भी पत्र का जवाब नहीं देगा, भले आप रजिस्टर्ड पोस्ट से आप उसको देख जाके देख लीजिए, आपको जवाब मिल जाए तो शायद मिल जाए आपको। तो बताया कि गवर्नमेंट कंगाल है हमारी, लोन लेती है। सत्य में भी ऐसा होता है, शूटिंग यहाँ पर तो ज्ञान रत्नों का धन लेगी, और वहाँ पर क्या होगा, वो राजा जो है वो प्रजा से लोन लेता जाए, मतलब वही राम वाली आत्मा जो प्रजा साहूकार होगी राम वाली आत्मा, उससे वो लोन लेती जाएगी, और क्या होगा लास्ट में उसको अपनी राजाई क्या करनी पड़ेगी, हैंड ओवर करनी पड़ेगी, किसको? वही राम वाली आत्मा साहूकार को। फिर त्रेता में फिर राम क्या बन जाएगा? राजा बन जाएगा। सत्य के अंत में साहूकार, फिर त्रेता फिर डायनेस्टी शुरू हो जाएगी। इसलिए बाबा धामी लक्ष्मी नारायण हम तो राम सीता बनते हैं। तो 2500 वर्ष जो लक्ष्मी नारायण के पांव के नीचे लिखा है राज्य, तो किसका हो गया? उन्हीं आत्मा का। तो जो जिस नंबर का लक्ष्मी नारायण, वो इस नंबर का क्या होता है त्रेता में? राम सीता बनता। तो इस तरह जो त्रेता की गद्दियां जो है, वो जो सती की 8 गद्दियां मैंने फर्स्ट गद्दी दौरान वाली आत्मा से हो गई, और जो बाकी 8 गद्दियां होती त्रेता में वही 8 नारायण लेंगे। लास्ट की जो 3 गद्दियां जो बची, उन 3 गद्दियों में वही राम के 3 भाई राजा ही भोगेंगे। लास्ट जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे मतलब वही जाकर के त्रेता में राम सीता बनेंगे नंबर 1। तो क्या हुआ, सत्य की तो लेंगे, संगम की तो नहीं ले लेंगे ना, सत्य का कोई गायन पूजन है क्या? गायन पूजन कहाँ का है? तो संगमी की तो उनको राजा मिलेगी नहीं। तो इस तरह जो वो दिखाया कि वही 8 गद्दियां जो नारायण बनने वाली आत्मा है, वो 8 गद्दियां, और फर्स्ट गद्दी तो राम की हो गई, मैंने 9 गद्दियां, बाकी जो 3 गद्दियां हुई उन 3 गद्दियों में वो राम के भाई राज्य करते हैं। उसके बाद त्रेता के अंत के बाद फिर डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, क्या? धरती कंप होता है, जो वहां मुझे बोलते हैं त्रेता के अंदर क्या हुआ, धरती कंप का मतलब कन्या माता हिली, जैसे यज्ञ में भी हुआ मम्मा बाबा ने सही छोड़ा तो कुछ आत्मा हिल गई। क्यों हिल गई? कुछ तो इसलिए हिल गई क्योंकि उनको ज्ञान का डोज पूरा नहीं मिला, और कुछ जो है वो उनको मम्मा बाबा से प्यार था, वो प्यार यज्ञ में मिला नहीं, और वो टूट गई। मैंने कन्या माता यज्ञ के अंदर जो धर्मी का पाठ बजाने वाली है वो हिल गई। तो जैसे ही मम्मा बाबा ने सही छोड़ा तो यज्ञ के अंदर जो है ये द्वापर युग की शूटिंग, कली की शूटिंग शुरू हो जाती है। यहाँ दिखाया गया रावण, रावण की जंजीरें निकली हुई है, ये लाइन दिखाई गई ना, इसका मतलब द्वापर से, द्वापर के शुरू से ही रावण ने क्या किया, सारी सत्ता को अपने हाथ में कर लिया, क्योंकि रावण राज्य में धर्म सत्ता राज्य सत्ता अलग अलग हाथों में होती है, और राम राज्य में क्या होता है मतलब मम्मा बाबा के समय मम्मा जो होती थी वो यज्ञ की कंट्रोलर थी, धर्म सत्ता राज्य सत्ता एक के हाथ में थी, वहां पर कोई अलग अलग हाथों में नहीं बैठी हुई थी। तो इस तरह ये दिखाया रावण राज्य की निशानी, किस तरह हमारे यज्ञ के अंदर रावण आदि शुरू होता है, झाड़ के चित्र में दिखाया गया है नारायण जड़ों पर बैठे हुए ब्रह्मा भक्त, वही मम्मा वहां के पैर छोड़ने के बाद यज्ञ के अंदर रावण राजे चलाते हैं, कैसे चलाते हैं तो उसमें दिखाया गया।
इसमें दिखाया गया है कि द्वापर में, द्वापर के 100 साल के बाद ही सोमनाथ मंदिर की स्थापना, बाबा ने भी मुझे बोला हुआ सोमनाथ मंदिर के बारे में कि भक्ति मार्ग में सोमनाथ का मंदिर बनता है तो भी कुछ समय बाद बनता होगा, मना वहाँ से 100 वर्ष यहाँ का 1 वर्ष एक बराबर, जैसे 5000 वर्ष ड्रामा की शूटिंग 60-65 वर्ष में होती है, इसी तरह वहाँ के 100 वर्ष और यहाँ पर 1 वर्ष, जैसे मम्मा ने सही छोड़ा 65 में और 65 के बाद ही मना 66 में वो सोमनाथ मंदिर की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा वो स्थापन हुई। तो बाबा ने मुझे बोला विकारी राजाएं बनते हैं तो बेहतर क्या बनाते हैं, निर्विकारी देवताओं के मंदिर बनाते हैं, तो मंदिर बनाने की पहला मंदिर बना द्वापर का वो बना सोमनाथ मंदिर। तो वहां का सोमनाथ का मतलब सोमरस पिलाने वाला, तो यज्ञ के आदि में भी उस ब्रह्मा को सोमरस पिलाया सोमनाथ। सोमनाथ का मतलब सोमनस चंद्रमा को कहा जाता है, चंद्रमा और उसको नाथा, चंद्रमा को क्या लिया नाथ ले, जैसे हमारे यहाँ शादी होती है ना तो नाथ में क्या डालते हैं नथनिया, इसलिए बाबा मुरली में बोलते हैं मैंने इनको अपनी बन्नी बनाया, इन्होंने मुझे अपना नहीं बनाया, मैंने इनको अपना बनाया। तो पुरुष जो रचता है तो पहले किसको रचता है, अपनी रचना को रचता है ना, रचना जो होगी फर्स्ट कौन रचना हो गई स्त्री बन्नी, माना स्त्री जो हो गई वो रचना हो गई, और जब बच्चों की रचना की जाती है तब फिर दोनों जो होगा उनके लिए क्या हो गए रचयिता हो गए। इस तरह जो हो सोमनाथ जो मंदिर की स्थापना हुई वो ब्रह्मा की आत्मा में ही, ब्रह्मा का पाठ बजाने वाली अर्थात जो द्वापर में जाकर के राजा विक्रमादित्य बनेंगे उन्होंने सोमनाथ मंदिर की स्थापना सती की शूटिंग में रजो प्रधानता की स्टेज में स्थापन की। पहले तो मंदिर बनता है फिर उसके बाद दिखाया गया कि पूजा भी कैसे व्यभिचारी पूजा, अनेकों की पूजा, तो भक्ति मार्ग मनुष्यों की बुद्धि में अनेकों की याद रहती है। अब शिव के मंदिर में जाओ तो वहां भी ढेर चित्र रखे होंगे तो वैचारिक है ना, मतलब कहने का ढेरों की जब पूजा करने लग जाते हैं तो वैचारिक बन जाते हैं, एक की जब पूजा होती है तो वो अव्यभिचारी भक्ति हो गई, तो धीरे धीरे भक्ति भी क्या हो जाती है वैचारिक हो जाती है। उसके बाद दिखाते हैं चित्र बनने शुरू होता है क्या, द्वापर के सोमनाथ मंदिर के बाद जब सोमनाथ मंदिर की स्थापना होती है उसके बाद क्या बनने शुरू हो जाता है चित्र बनने शुरू हो जाता है। चित्र कब बनते हैं, जैसे ब्रह्मा वाले कहे छोड़ा, ब्रह्मा ने कहे 69 से ही, हाँ 65 से लेकर के 70 के बीच में चित्र बनने शुरू हो जाते हैं, बना सोमनाथ मंदिर की स्थापना होने के बाद मम्मा के पेट छोड़ने के बाद चित्र बनना शुरू हो जाता है। तो चित्रों में भी ढेर सारे चित्र बनने शुरू हो गए, जो बाबा ने मुरली बोला कि आखिरी मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए, भक्ति मार्ग में ढेर के ढेर चित्र रख देते हैं व्यभिचारी हो गए ना, बाबा ने तो मुरली बोला इन चार चित्रों में सारा ज्ञान समाया हुआ है, ढेर ढेर चित्र जो है वो बनाने की जरूरत नहीं है। फिर भी क्या होता है बाबा की श्रीमत का क्या किया जाता है उल्लंघन किया जाता है और ढेर सारे चित्र प्रदर्शनी बनाई जाती है, तो ढेर सारे चित्र जो है भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा चित्र कहाँ पर दिखाए, चित्रकारी की साइड दिखाई गई। जब से क्राइस्ट आया तब से ढेर सारे चित्र बन गए, शुरू हो गए। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं उनमें ढेर सारे चित्रकारी की हुई है। तो ये काम किसका है? जरूर कोई क्रिश्चियन धर्म की आत्मा का ही होगा, क्योंकि माया के मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं, बाप की मत पर नहीं, माया की मत पर। तो वो जो दिखाया गया अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की जो गुफाएं दिखाई गई हैं, वो किस साइड दिखाई गई है? महाराष्ट्र की साइड दिखाई गया, मतलब बंबई कर रही है। तो इसका मतलब जरूर वो चित्र बनाने वाली आत्मा कहाँ से निकली होगी? एक तो क्रिश्चियन धर्म की आत्मा होगी और दूसरा बंबई साइड की होगी। वो तुम्हारे यज्ञ के अंदर भी ऐसी शूटिंग होती है, ढेर सारे चित्र बनाए, चार चित्रों के को तो छुपा दिया, जो बाबा के समय जो चित्र बने उनको तो कर दिया गुप्त, और जो माया के द्वारा जो चित्र बनाए गए उनको कर दिया प्रदर्शित। तो ये है रावण राज्य की निशानी, ढेर सारे चित्र बनाए। फिर उसके बाद क्या हुआ? चित्रों के आधार पर क्या बने? शास्त्र बने। द्वापर के मध्यांत में माना 500 वर्ष के अंदर ही क्या बने? शास्त्र बने। शास्त्रों का निर्माण होता है तुम्हारे यज्ञ के अंदर भी, ढेर सारे शास्त्र बनने शुरू हो गए। जैसे भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में मोटे मोटे शास्त्र कौन कौन से दिखाए? यीशु का भविष्य और हा? वो तो है ही है, हैं? भविष्य पुराण है, योग वशिष्ठ नाम पड़ा। तो उस योग वशिष्ठ को हमारे यज्ञ में क्या नाम डाल दिया उसका? हमारे यहाँ भी ऐसे मोटे मोटे शास्त्र बनने शुरू हो गए योग की विधियों से भी। उस योग की विधि और सिद्धि ने कितना मोटा शास्त्र बना दिया। बाबा तो मुरली बोलते बच्चे आजकल के लोगों के पास इतना टाइम नहीं है जो बैठ करके तुम्हारे मोटे मोटे शास्त्र पढ़ेंगे, छोटी छोटी पुस्तक बनाओ। जैसे आत्मा परमात्मा बाबा के समय की जो छोटी पुस्तक होती थी वो कौन कौन सी होती थी? गीता का भगवान कौन? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, आत्मा परमात्मा का परिचय। छोटी छोटी पुस्तक बनती, सच्ची मन की शांति, जीवन हीरे के लिए कैसे बनाए। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? जैसे भक्ति मार्ग में भी क्या होता है? धनेश्वर लोकेश्वर, संसार में हमारा क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। तो वो लक्ष्य लेकर के वो क्या करते हैं? ढेर सारे मोटे मोटे शास्त्र बनाने शुरू कर देते हैं। वहां तो बोलते अपन को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। योग माना प्रीत, प्रीत माना स्नेह। तो जब उसकी पहचान हो जाएगी उस स्वरूप की तो याद तो लगेगी, पता ही लग जाएगी। तो उस योग की विधि को और उसकी सिद्धि को कितना लंबा थोड़ा बखान कर दिया। इसी तरह भक्ति मार्ग में भविष्य पुराण क्या? भक्ति मार्ग भविष्य के बारे में दुनिया भर की बातें बता दी कि दुनिया में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा। तुम्हारे यज्ञ के अंदर भी वो शास्त्र बन गया, उसका क्या नाम पड़ा? विश्व का भविष्य। उसमें क्या क्या लिखा हुआ?
विश्व के बारे में नहीं लिखा, लेकिन दुनिया के बारे में
हाँ, जो भविष्यवाणियां है वो इसके अंदर क्या कर दी? ठोक दी। तो कितना लंबा चौड़ा विश्व का भविष्य बना दिया। तो कहने का भाव ये है कि बाबा तो बार बार बताते हैं तो बच्चे ढेर सारे शास्त्र बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन बाबा की बात कौन सुने?
ये भी रावण राज्य की निशानी हुई। क्या शास्त्र बनना, शास्त्र बनते द्वापर के मध्यान काल में। उसके बाद दिखाया गया युगल उपासना, जो युगल उपासना दिखाई गई है, दिखाया गया लक्ष्मी नारायण की पूजा, राम सीता की पूजा। तो ये जो उपासना दिखाई गई है रुचि मार की, ये तो बाबा ने मुरली बोला कि बाप ने प्रवृत्ति में रह करके क्या सिखाया, राजयोग सिखाया। तो जो प्रवृत्ति में रह करके राजयोग सिखाया तो सीखने वाले भी क्या कौन होंगे, प्रवृत्ति मार्ग वाले होंगे। मानेगा निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग सिखा ना सके तो बाप ने भी आकर के प्रवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना की। तो यहाँ पर भी देखा है कि जो प्रवृत्ति को मानने वाले हैं उनके सर पर तो ताज दिखाया गया, माना वो विष्णु की जिम्मेवारी का ताज धारण कर सकते हैं। और जो सिंगल उपासना करने वाले, जैसे यहाँ पर दिखाया कृष्ण की उपासना, चाहे वो सिंगल कृष्ण हो या कृष्ण या राधा हो, माना वो देवी हो सिंगल या कोई सिंगल देवता हो, ये जो पूजा हो गई ये क्या हो गई, रंग हो गई। क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग वालों को तो फिर भी जिम्मेवारी का ताज दिखाया है। वैसे भी दुनिया में जब स्त्री पुरुष दोनों जाते हैं तो दुनिया वालों की नजर नहीं पड़ेगी, और जब अकेले जाते हैं तो क्या होता है, दृष्टि पड़ती है। तो इसी तरह बताया कि जो सिंगल उपासना करने वाले हैं उनके सिर के ऊपर से ताज उड़ गया, और जो युगल उपासना करने वाले हैं मतलब प्रवृत्ति को मानने वाले उनके सर पर क्या दिखाया गया, ताज। हमारे यज्ञ के अंदर भी ऐसा होता है क्या, पहले जो होता था ऊपर श्री बाबा का चित्र और नीचे मम्मा बाबा के बड़े चित्र दिखाए गए, और फिर उसके बाद जैसे ही मम्मा ने शरीर छोड़ा बाबा ने शरीर छोड़ा तो क्या किया, क्या किया, मम्मा का चित्र तो हटा दिया और सिंगल उपासना माना कृष्ण की उपासना शुरू हो गई। तो जो सिंगल उपासना करने वाले हैं, क्योंकि मम्मा से तो उनको क्या था, ईर्ष्या थी, बुद्धि में क्या आया कि मम्मा ही बनेगी क्या कृष्ण के साथ राधा, हमें ही बनेंगे क्या। और बाबा के साथ बोलती भी थी बहने, ये दीदी दादियां, दीदी बोलती थी दादी भी बोलती थी कि बाबा आपने मम्मा को क्यों आगे रखा, तो बाबा बोलते थे जो मम्मा है जो ये है तो तुम नहीं हो, मतलब मम्मा के अंदर कोई क्वालिटी देखी होगी, भले उसकी उम्र छोटी थी लेकिन उसका जीवन कैसा था, जैसे तो कंट्रोलिंग पावर बहुत, कैसे ये तुमको करता है वो
दिया।
तो मम्मा का भी चित्र रखा जाता था और बाबा का भी चित्र रखा जाता था, ऊपर बाबा का कास्केट लगाते थे, नीचे मम्मा और बाबा, पहले युगल उपासना होती थी। उसके बाद धीरे धीरे क्या किया, जैसे मम्मा ने सही छोड़ा तो मम्मा का तो चित्र हटा दिया क्योंकि तो इच्छा पैदा हुई। वैसे भी लौकिक में भी कहते हैं कि ज्यादातर जो देवियों की पूजा मोस्टली पुरुष लोग करते हैं, और किसी की उपासना कन्याएं माताएं करती हैं। तो इस तरह जो उनका जो लगाव था वो ब्रह्मा बाबा में ज्यादा था, तो इस तरह उन्होंने क्या किया, मम्मा की फोटो तो निकाल दी। ये काम किसके होंगे, जो जो उस समय यज्ञ का हेड बनी होगी, तो हेड कौन थी, कुमार का। तो ये जो एक्ट करी ये किसने की, ये अलग करने की एक्ट किसने की, इसलिए बाबा बोलते हैं रावण का काम क्या है, जुदा करना। रावण क्या करता है, जुदा करता है, उनके जुदा करने से क्या वो जुदा हो जाएगी क्या, तो जुदा होने वाली नहीं। तो उल्टा दिखाया गया है, जो सिंगल उपासना करने वाले जहाँ कृष्ण की उपासना करते हुए दिखाया गया ना, उसके सर के ऊपर से ताज उड़ गया। माना ऐसी आत्माएं जिम्मेवारी का ताज धारण करने काबिल ही नहीं है, इसलिए उनका ताज पहले से ही उड़ा दिया। और जो प्रवृत्ति को मानने वाली है, माना युगल को मानने वाली है, उनके सिर पर ताज है। तो ऐसे हर सेंटर पर देखना, जहाँ पर तो मम्मा बाबा दोनों का चित्र है तो समझ लो वो कुछ प्रवृत्ति मार्ग वाला सेंटर है। और जहाँ पर मम्मा को निग्लेक्ट कर दिया, रख दिया कहीं एक कोने में ताक में छोटी सी मूर्ति बना करके उड़ा दिया, तो उसे जरूर कैसे है, जरूर सन्यासी है। कि सन्यासी जो कभी भी वो तो खुद प्रवृत्ति मार्ग वाले नहीं है तो प्रवृत्ति को मानेंगे कैसे। तो ये भी हमारी यज्ञ के अंदर ही शूटिंग होती है सिंगल उपासना की। फिर दिखाया गया कम कला वाले जो राम सीता बनने वाली आत्माएं है, जो कम कला वाले हैं, उनको भी जो दिखाया गया पूजा करते हुए, जो पूजा कर रहे हैं पुजारी, उनके सिर पर भी ताज है। माना ये जिम्मेवारी का ताज धारण कर सकते हैं, भले कम कलाओं वाले हैं। फिर नीचे और भक्ति जरा और नीचे गिरी तो यहाँ पर दिखाया है जानवरों की पूजा करते हुए, क्या जानवरों की पूजा करते हुए। जानवरों में भी सबसे पहले आगे किसको दिखाया है, हनुमान, क्या हनुमान की पूजा करते हुए। हनुमान का मतलब वास्तव में तो हनुमान और गणेश का पाठ बजाने वाली आत्मा ये रामकृष्ण वाली आत्मा है, महावीर जिसे कहते हैं, महावीर माना शंकर का पाठ बजाने वाली आत्मा, और गणेश का पाठ बजाने वाली आत्मा ब्रह्मा। वास्तव में तो ये ओरिजिनल जो हनुमान गणेश माना महावीर गणेश का पाठ बजाने वाले वो तो है वो, ये जो बैठे हुए हैं ये डुप्लीकेट बैठे हुए हैं, क्या ये बैठ करके अपनी पूजा करवाते हैं। तो ये हनुमान को जो दिखाया गया जानवरों की पूजा करते हुए, तो इनकी पूंछ दिखाई गई है, माना इनकी पूंछ, पूंछ जो निशानी है वो विकारियों की निशानी है, इनकी विकारों रूपी पूंछ यज्ञ के अंदर बड़ी बड़ी दीदी दादियों को दिखाई दे रही है। यहाँ ये आत्मा जो है विकारी है, इससे जो है ये सेंटर टूटा है, क्योंकि बाबा ने मुरली बोला अगर कोई सेंटर टूटता है जरूर उस सेंटर के अंदर क्या है, इम्प्योरिटी है, क्योंकि इम्प्योरिटी से होता है खंडन और प्योरिटी से होता है संगठन। जहाँ प्योरिटी होगी वहाँ यूनिटी जरूर होगी, जहाँ इम्प्योरिटी होगी वहाँ सेंटर क्या होगा, टूट जाएगा। तो उस समय जो नंगल सेंटर था, नंगल का सेंटर सुना ना, तो वहां पर बहुत अच्छी क्लास चलती थी। टाइम के बाद वो सेंटर टूट गया, कोई पोछड़ी वाला हनुमान पहुंच गया वहां पर, क्या और सेंटर को क्या कर दिया, तोड़ दिया। उस समय जो 73-4 की बात है, ये पंजाब में ये माउंट आबू ये
हाँ,
जब नंगल कब खरीदा मालूम, जब नंगल सेंटर टूटा वो पूछड़ी वाले ने वहाँ पर क्या लगा दी, आग लगा दी। अब उस बात को छुपाने के लिए उन्होंने क्या किया, उस समय बहनों को जरूरत थी पैसे की, पैसे की मतलब वो बिल्डिंग पांडव वन था वो बिक रहा था, पांडव वन तो नाम उन्होंने कहा, वो बिल्डिंग बिक रही थी। तो बहनों की इच्छा ये थी कि इसको कैसे ना कैसे ले लें। अब वो ये भी जानती थी कि ये ऐसा है, इसकी एक्ट ऐसी है, लेकिन उसने ये बोला कि अगर आप ये लेना चाहती हो तो हम लेंगे, पैसा हम लगाएंगे, लेकिन एक शर्त होगी। शर्त उसने ये रखी, इस सेंटर का जो हेड है वो हमको बनाना पड़ेगा। हाँ, पहले उसने बात बहनों से मनवा ली, तो बहनों को तो क्या करना था, उनका तो मजबूरी था। इस तरह जो वो सेंटर जो पांडव वन, मतलब वो जैसे आजकल की दुनिया में होता है, बुद्धि बुद्धि जाएगी नहीं भाई, इतना बड़ा संस्था का हेड वो ऐसी ऐसे कर सकता है क्या? विश्वास ही नहीं होगा किसी को। तो प्योर होता है ना, बाबा ने कहा जो भारतवर्ष में जो साधु सन्यासी होते थे, ऋषि मुनि होते थे, वो जो तपस्या करते थे वो तो इतनी गुप्त करते थे किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था। भारतवर्ष की परंपरा रही, दिखावा की वृत्ति क्रिश्चियंस की रही, भारतवासियों के अंदर ये वो नहीं होती थी। हाँ, तो इस तरह जो उस समय वो सेंटर खरीदा गया, तो जबकि बहनों को ये बात मालूम है कि ये व्यक्ति इस तरह का है, लेकिन फिर भी उसको क्या कर दिया, सेंटर रूपी मंदिर बना कर गए, उसकी मंदिर की मूर्ति में क्या कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा करवा दी। अब वो तैयार हो गया मंदिर, और मंदिर में जो है वो हनुमान की पूजा हो गई। तो हनुमान और साथ साथ गणेश, माना इनकी पूछ तो है, इसलिए कहते हैं शास्त्रों में वास्तव में तो असलियत तो वो है जिसके लिए शास्त्रों में गायन है, बाड़ी पूछ दीन कपि खेला, रामायण में है ना कि उन्होंने जो है पूछ से क्या किया, खेल किया, और रहा न बसल न घर तेला, रावण की लंका का जितना भी कपड़ा था वो उसकी पूछ में लगा दिए, सुंदर सुंदर वस्त्र सब उसकी पूछ में लिपटा दिए, और ऊपर से क्या डाल दिया, मिट्टी का तेल डाल दिया।